ओम शांति। आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज का हमारा ये प्लानरी सेशन फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज के प्लानरी सेशन का हमारा टॉपिक सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव। सोशल मीडिया मानव जीवन का आज के समय एक अभिन्न अंग बन चुका है। आज की स्थिति ये हो गई है कि व्यक्ति बिना कुछ खाए पिए रह सकता है, पर सोशल मीडिया के बगैर नहीं रह सकता। आपने हमने ये सब दौर देखे हैं, जब शहर में कुछ भी होता है, छोटा मोटा दंगा फसाद होता है या कोई एग्जाम्स होते हैं, तो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है कुछ एक घंटों के लिए। आप सभी इस चीज के अनुभवी होंगे कि उस समय हर एक मनुष्य व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, क्या होती है। हर कोई मोबाइल की स्क्रीन को देखता रहता है कि अभी कोई मैसेज ब्लिंक होगा, अभी इंटरनेट आएगा, अभी इंटरनेट आएगा। उस टाइम जैसे सारे मनुष्य ब्लॉक हो जाते हैं। इसलिए ये बात तो हम बिल्कुल मान ही सकते हैं कि कितना गहरा इम्पैक्ट आज का सोशल मीडिया मनुष्य पर, स्पेशली यूथ पर डालता जा रहा है। इस सोशल मीडिया का तात्पर्य ऐसे सूचनाओं एवं संचार से है जो विभिन्न कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन या अन्य डिवाइस के जरिए संचालित किया जाता है। सोशल मीडिया इंटरनेट की ऐसी मीडिया है जहां हर प्रकार की जानकारी मौजूद है, या जैसे एक गहरे समंदर के जैसा है जहां सूचनाओं का भंडार समाया हुआ है। सोशल मीडिया के ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वह किसी भी समाज की दशा को सुधार भी सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। इसलिए आज महान अनुभवों से ओतप्रोत हमारे अतिथि गणों के बीच ब्रह्मा कुमारिस ने इस प्लानरी सेशन में ये विषय रखा है कि इस सोशल मीडिया का उपयोग हमें किस दिशा और किस दशा में करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, जिसका प्रभाव समाज के ऊपर सकारात्मक रूप से पड़े। इस टॉपिक पे, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं सभी अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आज के प्लानरी सेशन के हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी, आपसे अनुरोध है आप कृपया मंच पर आए। डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे जी सभी तालियों से उत्साहवर्धन करेंगे। ब्रदर नाथमल भाई जी, ब्रदर वाई बाप जी, ब्रदर दिलीप जैन जी, तालियां बजती रहे। डॉक्टर पी शिव स्वरूप जी, सिस्टर आरती त्रिपाठी जी, सिस्टर आरती त्रिपाठी जी, डॉक्टर कमलेश मीणा जी, ब्रदर बीके निकुंज जी, डॉक्टर आवास शुक्ला जी, डॉक्टर आवास शुक्ला जी, जैसे कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले हम गणेश वंदना करते हैं, प्रभु की स्मृति में बैठते हैं, तो आइए इस सुंदर विषय पर विचार विमर्श करने से पहले हम कुछ क्षण प्रभु जी की दिव्य स्मृति में बैठते हैं। हम सबके बीच में हमारे गणमान्य अतिथि उपस्थित है। मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से निवेदन करूंगी कि सभी अतिथियों का बैच बुके एवं साफा पहनाकर स्वागत करें और साथ साथ हम सभी भी करतर ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। तालियां बजाएंगे तो उसका हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट है, इसलिए तालियां बजाते रहिएगा। स्वागत हमारे भारतीय संस्कृति की एक दिव्य और अलौकिक परंपरा है, जिसको हम दो शब्दों में स्पष्ट करते हैं, अतिथि देवो भव। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी आमंत्रित करूंगी स्वागत नृत्य प्रस्तुत करने के लिए कुमारी लव्या पूर्वी और कुमारी कनक। आप राजापाई जयपुर से हैं। गीत के बोल है शुभ दिन आयो रे। सभी तालियों से बच्चियों का उत्साहवर्धन करेंगे।
मेरे भारत की बेटी,
बहुत ही सुंदर नृत्य की प्रस्तुति। पुनः एक बार जोरदार तालियों से हम सभी बच्चियों का अभिवादन करेंगे। अब ज्यादा समय में न लेते हुए हम इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। सभी स्पीकर्स से मेरा निवेदन है, आपके सामने प्रोग्राम शीट रखी है, समय की सीमा है। आशा करती हूँ समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने विचार हम सबके सामने रखेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सोमनाथ वडनेरे, डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे। आप उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर और जनसंचार पत्रकारिता विभाग में कार्यरत है। आपने जनसंचार और पत्रकारिता में PhD की हुई है। आपको मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में गोल्ड मेडल से नवाजा गया है और अभी आप ब्रह्मा कुमारीज के प्रथम हिंदी वेब पोर्टल के संपादक भी हैं, डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे।
ओम शांति। नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2023 आज के प्लेनरी सेशन का मुख्य विषय है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, अर्थात सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव। मीडिया विंग ने इस टॉपिक को लेके विभिन्न क्षेत्र में जो विद्वत मंडली है उसको, इनको सभी को यहाँ पे मंच पर इनवाइट किया है। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया का प्रभाव जो है समाज पर अपनी नजरिए से क्या है उसको जानने के लिए, बताने के लिए ब्रदर बीके नाथुमल भाई जी, जो जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग के हैं कटक से, उनको भी यहाँ पे मंच पर नवाजा गया है। ब्रदर वाई बाब जी, जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया हैदराबाद से, उनको भी बुलाया गया है। ब्रदर दिलीप जैन, जो रेडियो जॉकी एंड एक्टर मुंबई से है, भ्राता जी को भी एज ए रेडियो के नजरे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है वो बताएंगे आपको। डॉक्टर पी रामस्वरूप भाई जी, जो सीनियर रीजनल डायरेक्टर इग्नो के नागपुर से है, उनको बुलाया गया है मंच पर। डॉक्टर कमलेश मीना जी, जो असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर इग्नो से पटना से, उनको भी बुलाया गया है। हमारे सीनियर मोस्ट और नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हमारे भ्राता रिस्पेक्टेड बीके निकुंज भाई जी, उनको यहाँ पे मंच पर आपसे वो संवाद करेंगे। और सिस्टर शुक्ला जी, डॉक्टर शुक्ला जी, जो सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से, वो भी आपको संवाद करेंगे सोशल मीडिया पर। और चेयरपर्सन के रूप में हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी। तो इस प्रकार से पूरा मंच जो है अलग अलग दिशा में, अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और आज जो चिंताएं हैं समाज की, सोशल मीडिया जिस तरह से रैपिडली ग्रो कर रहा है और सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पर किस प्रकार से हो रहा है उसके ऊपर चिंतन करने के लिए ये विचार मंच तैयार है। भाई और बहनों, आज जो मुझे सौंपा गया है कीनोट स्पीच के लिए बुलाया गया यहाँ पे, मैं समझता हूँ विषय तो काफी गहरा है, लेकिन जैसे कि रिस्पेक्टेड सिस्टर योगिनी बहन जी ने कहा कि समय की सीमा को देखते हुए हमको सभी को अपने विचार रखने हैं, तो इस प्रकार से सोशल मीडिया का प्रभाव जो समाज पर है मुझे लगता है दो पहलू इसके होने चाहिए। जो टॉपिक न्यूट्रल है, एक्चुअली नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, बल्कि इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि दोनों जो प्रभाव है उसका आउट ऑफ बॉक्स मैं चिंतन करने जा रहा हूँ। जो सभी को पता है वो बातों को मैं ले नहीं रहा हूँ, लेकिन जो आउट ऑफ बॉक्स जो बातें हैं, जो चिंतनीय बातें हैं, जिसके ऊपर हमें विचार करना है और जिसके ऊपर हमें समाधान परक सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि सुबह ही इनॉगुरल सेशन में बताया गया और हमारी मीडिया विंग का भी एक ऑब्जेक्ट है कि समाधान परक पत्रकारिता। तो आज प्लेनरी सेशन में हम केवल समस्या बताएंगे नहीं बल्कि उसका समाधान भी बताएंगे। अगर अनुचित प्रभाव है तो अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए, सोशल मीडिया के अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, विचार मंच से मेरी गुंजाइश होगी कि इस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। हालांकि कुछ नकारात्मक पहलू जो है काफी रैपिडली ग्रो हो रहे हैं, नकारात्मक पहलू जिसका जिक्र तो सभी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि विशेषतः युवा पीढ़ी पर जो निगेटिव पहलू सोशल मीडिया का काफी रैपिडली ग्रो हो रहा है। बच्चों पर मानसिक उनका जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी ये प्रभाव है अनुचित हो रहा है, विशेष करके अर्थव्यवस्था पर इसका काफी गहरा प्रभाव हो रहा है, अनुचित प्रभाव जिसको हम कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था को लेके काफी नेटवर्किंग साइट जो है ये अलग अलग प्रकार की जो निगेटिव इनपुट्स हमें परोस रही है उसका जो अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए इसके पर हम चिंतन करेंगे। हालांकि एक जो स्टैटिस्टिकल डाटा मेरे सामने है निकुंज भाई जी, विशेष करके प्रति व्यक्ति औसतन 72 घंटे ऑनलाइन रहता है, 72 हवर्स ऑनलाइन रहता है, काफी चौंकाने वाली ये बात है। और हालांकि ऑन स्क्रीन टाइम को कैसे रिड्यूस किया जाए और अगर रिड्यूस ना करें तो भी ऑन स्क्रीन टाइम को हम किस प्रकार से पॉजिटिविटी में लाएं इस पर हमें चिंतन करना होगा। और दूसरा लास्ट एक निगेटिव पहलू जो है उसका यह है कि वास्तविक मित्र जो है हमारे, वास्तविक मित्र से आभासी मित्र जो है, वर्चुअल फ्रेंड्स जो है, उसको हम ज्यादा उसके ऊपर हम ज्यादा विश्वास रख रहे हैं। ये मैं समझता हूँ ये अनुचित प्रभाव सोशल मीडिया का इस पर है। तो हमें चिंतन करना होगा कि जो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं उनको किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाए। काफी गहरा संकट है, गहरी मामला है, क्योंकि काफी ऐसे उदाहरण है जैसे हनी ट्रैपिंग जो एक निगेटिव पहलू है बहुत बड़ा सोशल नेटवर्किंग का। हम देख रहे हैं कि पिछले कई उदाहरण जो है बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, फिल्म एक्टर्स, सेलिब्रिटीज हनी ट्रैपिंग में पकड़ के गए हैं और इस चपेट में आ गए हैं। तो ये निगेटिव पहलू हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं। प्राइवेसी तो डेफिनेटली खतरे में है, नो डाउट। साइबर अपराध, हैकिंग वगैरह, उसके ऊपर मैं ज्यादा चिंतन नहीं करूंगा, लेकिन एक लास्ट पहलू में निगेटिविटी का आपके सामने उद्धृत कर रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन पर हम करना होगा। रिश्तों की दूरियां कम हो रही है, जो हमारी रिश्ते हैं, निजी रिश्ते हैं, पर्सनल रिश्ते हैं, कुटुंब का रिश्ता है, संवाद है, वो काफी कम हो रहा है। हालांकि इतने सारे निगेटिव इम्पैक्ट को देखते हुए सॉल्यूशन तो यही होगा कि हम खुद को पहचाने और खुद को पहचान से अपनी जो इनर क्वालिटीज है, इनर ब्यूटी जो है, उसको हम ग्रो करें। कुछ पॉजिटिव प्रभाव जो है, सकारात्मक प्रभाव जिसका चिंतन मंच पर करेंगे। मेरे साथ मेरे अगल बगल में बैठे हैं दो इग्नो के सीनियर प्रोफेसर्स हैं, मेरी सुबह उनसे थोड़ा इंटरेक्शन हुआ मेरा उनसे। तो पॉजिटिव प्रभाव जिसको हम देखेंगे कि इग्नो ने काफी अच्छी तरह से पॉजिटिविटी को लिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इग्नो एक देश का एक बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है जो सरों को शिक्षा देता है और उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट का जो स्वयं शिक्षा प्रणाली है उनका काफी अच्छी तरह से यूज किया है और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में उन्होंने काफी रिच कंटेंट स्वयं में डाला है और स्लाइड शेयर्स वगैरह जो अच्छे सोशल नेटवर्किंग स्लाइड्स जो है इग्नो ने रैपिडली उसको प्रमोशन दिया है, ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ ये शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा सकारात्मक प्रभाव पहलू हम कह सकते हैं। सामाजिक विषयों पर कई जागरूकता सोशल मीडिया ने की है, इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। सब कुछ आग लग गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसी बात नहीं है। कुछ है जिसको हमें रोकना होगा, बाकी पॉजिटिविटी काफी जो अच्छी है उसको हमको लेना ही जरूर है। सामाजिक दूरियां तो हम देखें, रोजगार का अवसर, रोजगार जो है जो बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार का, YouTube से काफी लोगों को रोजगार मिला है, कई साइट्स ऐसे हैं जिसको लोग अच्छी तरह से उसको रोजगार की तरफ भी देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बाकी सोशल मीडिया का एक सकारात्मक जो पहलू है वो मैं अभी लास्ट के पॉइंट्स को कंक्लूड करना चाहता हूँ। सकारात्मक पहलू ये है कि सोशल मीडिया उन वांछित घटकों का मूक नायक बना है। मूक नायक माना जिनको अपनी आवाज पहुंचाती नहीं आती है, उनकी आवाज सोशल मीडिया बना है। जो भारत के संविधान के मुख्य हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्होंने मूक नायक एक वृत्त पत्र निकाला था जिसके जरिए उन्होंने उन वांछित लोगों की आवाज उठाई थी समाज के, तो उन्होंने सभी को उनका प्लेटफॉर्म दिया था। उसी प्रकार आज सोशल मीडिया मूक नायक बन गया है, तो लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया है जो अपनी बातों रखने के लिए। जिसी प्रकार सिटीजन जर्नलिस्ट, जैसे दूसरे शब्दों में कहेंगे, ये बातें काफी है। अभी एक जो मिसिंग डायमेंशन है जो मुझे लगता है इस मंच से बोलना चाहिए, सोशल मीडिया का एक लास्ट का एक प्रभाव है। मैं इस बात में थोड़ा कंफ्यूज हूं क्यों मना सकारात्मक या नकारात्मक है। हालांकि आदरणीय प्रोफेसर दिविजय सर ने सुबह ही कहा कि टूल्स जो है बेकार नहीं होते, टूल्स को यूज करने का यूजर जो है, यूजर कंज्यूमर, यूजर कस्टमर, जिसको हम कहेंगे, जो जो भाषा में कहेंगे, वाचक पाठक दर्शक श्रोता जो भी कहेंगे, ये जो है टूल्स को इस्तेमाल करने वाला दोषी रहता है। इसीलिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को कहेंगे, ये सोशल मीडिया का सबसे अभी लेटेस्ट जो पहलू उभर कर सामने आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखेंगे कि एक टीवी चैनल है, उन्होंने अपनी एंकर एआई को बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर, सना करके एंकर आपने देखा भी होगा टीवी में, कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लेटेस्ट एग्जाम्पल्स है। तो जो लाइव जो है चैतन्य जो है, उसके बजाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सोशल मीडिया पर धीरे धीरे अपना प्रभाव डाल रहा है। हालांकि आगे चल के एक गंभीर चिंता ये भी हो सकती है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल मीडिया का पूरा कब्जा करेगा, चिंतन का विषय है। आगे चल के चैट जीपीटी, सुना होगा शब्द आपने, चैट जीपीटी तो बहुत सारी सारे फैक्टर्स पर अपना प्रभाव डमा के रखा है। जैसे चैट जीपीटी तो आपको पता होगा कि जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग है, आप बताइए वो सारा प्रोग्राम लिख के देंगे। अभी अगर मैं डालूंगा सोशल मीडिया का सोसाइटी पर प्रभाव, तो मेरा स्पीच चैट जीपीटी तैयार करके देगी। इतना एडवांस ये सारा निकल गया है। आगे चल के बहुत सारा एग्जाम्पल्स या अच्छे प्रभाव भी है, दुष्परिणाम भी हो गए। मैं सारी ये बातें मंच पर छोड़ना चाहता हूँ, इसके डिटेल में आदरणीय विचार मंच जो है इसके पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि कीनोट स्पीकर का वही मतलब रहता है कि जो विचार मंच है इसके ऊपर चिंतन करेगा। मैं ये सारा जो मामला है अपने आदरणीय जो हर क्षेत्र के विद्वान है, विद्वत सभा यहाँ पे बैठी है, वो मंच पर विचार डालेंगे। तो इस प्रकार से समाधान भी है और समस्या भी है, तो दोनों को हमारे आदरणीय जो मंच है वो निश्चित ही समाधान करेंगे। मैं और आप उनके बीच में ज्यादा समय न रहते हुए यही बात करूंगा कि मीडिया विंग ने बहुत अच्छी तरह से बात को उठाया है, हमेशा ये सपोर्ट देते रहते हैं मीडिया विंग, जो समाधान पर पत्रकारिता है, जो अभियान चला जा रहा है उसके ऊपर सोशल मीडिया में यहाँ पे चिंतन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।
हमने बचपन में ही सुना था हमारे बड़ों से कि आपको एक साथ कंकर और मोती एक ही कलर के दिए जाएंगे, परखना आपको है कि आपको कंकर के साथ खेलना है या मोती के साथ खेलना है। ये आज का जो विषय है हमारा बिल्कुल इसी तरह से है, सोशल मीडिया के बटन, सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट करना है, किस तरह से पोस्ट करना है, सब कुछ हमारे हाथ में है, परंतु किस क्वालिटी का हम परोस रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, ये हमारी बौद्धिक क्षमता पर, हमारी भावनाओं पर निर्भर किया गया है। थैंक यू सोमनाथ भाई, आपने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आज मंच के लिए दिए हैं। अब मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर पहले ही उनको बुलाना चाहूंगी, भ्राता ब्रह्मा कुमार नाथमल भाई जी। आप ब्रह्मा कुमारी संस्था से पिछले 50 वर्षों से जुड़े हुए हैं, समर्पित रूप से आप ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। आप मीडिया विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, आप जूरिस्ट विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और 2016 में आपको राजस्थान गौरव अवार्ड से भी नवाजा गया है। ब्रह्मा कुमार नाथमल भाई जी,
ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। हमारा सम्माननीय मंच, डॉक्टर सोमनाथ भंडारी जी, हमारी भाई बाप जी दिलीप जैन जी, श्री शिवरूप जी, आरती बहन अभी नहीं पहुंचे हैं, कमलेश मीना जी, निकुंज भाई जी, नवा शुक्ला बहन जी और नरेंद्र कौशिक जी, और मंच संचालन करने के लिए हमारी मेथी योगनी बहन जी। जैसा कि आपने अभी सुना, सोशल मीडिया अर्थात इस पर सोसाइटी पर कैसे इम्पैक्ट करता है वो हम सभी जान चुके हैं। जिसको भी अगर खड़ा किया जाए तो उसको बहुत डिटेल से बता सकता है, सबकी कैपेसिटी है। क्वेश्चन आता है कि सोशल मीडिया आज उसने पूरे सोसाइटी पर कहो, हर एक के दिल पर कहो, हर एक के मन के ऊपर कहो, पकड़ बना ली है। उसमें हम देखते हैं कि सोशल मीडिया ने पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को एक इतना संकुचित करके हमारे सामने रख दिया है कि जैसे हम एक घर में, एक परिवार में बात करते हैं, ऐसे ही पूरे ग्लोब में किसी भी कोने में कोई भी बात होती है तो उसको कुछ सेकंडों के अंदर हमें पता चल जाता है। जो एक समय था कि उसके बारे में हमें कुछ दिनों तक पता नहीं चलता था। तो इतना सोशल मीडिया के ऊपर, अर्थात सोशल मीडिया ने इतना समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डाला है कि किसी भी कोने में, चाहे किसी गांव में हो, चाहे किसी जहाज में हो, चाहे ऊपर उड़ रहा हो, कहीं भी आ, कहीं तैर रहा हो, लेकिन उसको कुछ सेकंडों के अंदर किस जगह क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाती है। और इसके लिए हमारे भंडारे जी कह रहे थे, ये हकीकत है कि अभी तक उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल भी नहीं कर सकता है, उसके लिए दिशा देने के लिए भी ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई कानून प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहा है कि उसको यही परोसना है। आज हमारे प्रिंट मीडिया के ऊपर बात आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बात आती है, तो उसके लिए दिशा निर्देशन और दशा, उसके बारे में कुछ कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, लेकिन सोशल मीडिया के अंदर हमारा कोई भी कंट्रोल या जिसको कहें कि कोई वो चीज आज तक प्रभावी रूप से नहीं है। तो इसलिए इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा कि ये सोशल मीडिया का जो हम देखते हैं कि बहुत अच्छा प्रभाव है, लेकिन उसके साथ साथ में आज बच्चों को अगर हम देखें, उसके एजुकेशन लाइफ के ऊपर देखें, तो इतना हम सब जानते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमिक्स के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, सोशल और मेनली तो हमारी जो लाइफ, जो जिसको हम कहें कि पारिवारिक लाइफ, तो अगर इसको हमें कुछ दिशा देनी है, कुछ दशा देनी है, तो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो सोशल मीडिया से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, हर एक व्यक्ति को मन में ये विचार कर लेना है कि मुझे समाज को क्या देना है। अगर हमें समाज को पॉजिटिव बनाना है, सुख शांत बनाना है, अच्छा बनाना है, तो अगर हमारे पास में कोई पोस्ट आती भी है, लेकिन उस पर हम तुरंत विचार करें कि इसको मैं अगर फॉरवर्ड करता हूं तो उसको सोसाइटी किस रूप से लेगी और उसका दिशा कैसी होगी, दशा कैसी होगी, अगर ये हर एक इंडिविजुअल इस बात को सोच ले और उसके बाद में उसको एक्टिव होकर के पार्ट बजाए, तो वही एक चीज इस समाज की दिशा और दशा के ऊपर में निर्भर करती है, अर्थात उसको बदल सकती है। अदरवाइज तो इसको बदलना है, उसके ऊपर कंट्रोल करना, ऐसी कोई विधि विधान नहीं है। लेकिन हम इंडिविजुअल इस बात को अगर स्वीकार कर लें कि मुझे ये सोसाइटी कैसा चाहिए, मैं सोसाइटी को जो दे रहा हूं उससे उसका रिजल्ट क्या होगा, वो सोसाइटी किधर जाएगी, ये विचार अगर हम इंडिविजुअल रूप से समझ लें कि मुझे सोसाइटी किस रूप में देखना चाहते हैं या सोसाइटी कैसा चाहते हैं, ये सुख शांति वाली सोसाइटी चाहते हैं या सुख शांति जैसे कि आज दुनिया में भी कह रहे हैं कि हरेक व्यक्ति सुख शांति चाहता है लेकिन सुख शांति उसको मिल नहीं रही है और वो जगह जगह भटक रहा है, खोज रहा है। तो अगर हम ये अपने इंडिविजुअल लाइफ में विचार करके उसी पर काम शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि इसका इफेक्ट, आज हम इतने सारे भाई बहन बैठे हैं इस मीडिया से संबंधित है, लेकिन मीडिया से जो संबंधित नहीं भी है उनके ऊपर भी हम इस बात को विचार को हम पहुंचा सकते हैं कि हमें सोसाइटी को वो चीज देनी है जिससे सोसाइटी सुख शांतिमय और संपन्नमय बन सके, एक अच्छा चिंतनमय सोसाइटी बन सके। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर में थोड़ा सा हम इम्पैक्ट डाल करके सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए सोशल मीडिया बहुत काम कर सकता है। तो इसी विचारों को मैं आगे रखते हुए कहूंगा कि अगर हम अपने सोसाइटी को एक अच्छा देखना चाहते हैं, सुख शांतिमय से देखना चाहते हैं, तो हम इंडिविजुअली इस पर काम करें और वही काम हम दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, दूसरों को बताएं कि हम क्या चाहते हैं और हमें क्या देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसका इम्पैक्ट हमेशा हमेशा के लिए अच्छा पड़ता जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।
थैंक यू ब्रदर नाथमल भाई जी। मैं नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर को इनवाइट करना चाहूंगी, ब्रदर वाई बाप जी। आप इंडिया के जनरल ऑफ पब्लिक रिलेशन सोसाइटी के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, आप वहां के लीगल एडवाइजर भी हैं, आप पहले PRSI के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ हैदराबाद चैप्टर भी थे। आपने अपने करियर की शुरुआत जर्नलिस्ट बनकर की, उसके बाद आप पब्लिक रिलेशंस वॉइस के एडिटर भी बने। वर्तमान समय आप 3 साल से लगातार स्टीव इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड की जूरी है। राता वाई बाप जी,
चेयरमैन ऑफ द सेशन प्रोफेसर कौशिक जी, keynote speaker Somnath ji and speakers on the dais, BK brothers and sisters, participants, good evening and Om Shanti. In this session we are discussing the impact of social media on society, and therefore it is necessary for us to understand the terms like society, community, information, communication, media, social media, so that we can understand the subject in a better way. Society. It means people living together and sharing several things in common. Society is an environment by itself, and people interact with one another and they communicate in their own language, be it a specific language or a gestural language, to communicate with each other. People get into various relationships and establish cultures and subcultures together. All these things will lead to a social fabric, that is society. On the other hand, community is also a group of people but residing in the same area with a common interest. Communities, as we see, can be rural, can be urban, can be suburban, and even we hear about gated communities. And it is the reason why organizations practice community relations as part of their corporate social responsibility. Thus, the society is built upon interactions with varied people and wider in concept than the community. And now communication. It is one of the basic instinct for any human being, not only human beings, for any living being. And information is said to be the oxygen and the lifeblood for the human society. And now come to the medium. Medium is nothing but a mode of communication, a channel of communication. Media has been defined as the channels of communication and means of mass communication, such as newspaper, radio, and television, are called conventional media or mainstream media. And prior to this mass communication media, we had folk art forms native to our culture to cater to the communication needs, that is information, education, and entertainment. And now social media. It is the media used by the individuals in the society where they can create the content and share it with others. With the advent of internet in the last decade of the previous century, a new media came, and we called it as IT new media. And this social media is an extension and a continuation of that new media, and it refers to a variety of tools that facilitate sharing of information among the users. You know, from Facebook to Instagram, and from Twitter to YouTube, today more than 4.8 billion of people out of the 8 billion people of the world use social media, that is equal to 60% of global population and 93% of all internet users. This year, 94.8% of internet users accessed chat and messaging apps, followed closely by social platforms with 94.6%. And that is the penetration of social media into the global society. Information and communication technology has changed rapidly in the last two decades with key developments in social media. Its access and reach became quite affordable and easy for use by citizens. And you know, citizen journalism is thus made possible just because of the social media components. Today, social media has become a distinct culture of communities in terms of connectivity and maintaining relations. Human actions are essentially related to the very society, with politics, government, work, business, culture, etc. A look at the impact of social media in these areas will let us know how it is intertwined with the behavior of human beings. And if you look at the society and the impact of social media, an individual is more active with social media platforms these days than in his real society. He can create memes and anything and entire online things. Without social media, social, ethical, environmental, and political ills would have minimal visibility, and increased visibility of these issues and these ills of the society has shifted the balance of power from the mainstream media owned by a few individuals to the masses. Politics, polity, and social media interconnection. In comparison with other media, the influence of social media in political campaigns has increased, we know it. And then, today's public opinion is tomorrow's legislation. It is a saying, social media is influencing the public opinion like anything. And in the area of business, it is unusual to find an organization that does not reach its customers and prospects through social media platforms. Companies see importance of using social media to connect with customers and build revenues. Businesses have realized that they can use social media to stimulate demand and create integrated target of product offerings. And now, in the area of employment, social media influences the recruitment and also hiring. Professional networks such as LinkedIn are very important platforms for anyone looking to stand out in their profession. They allow people to create market a personal brand. As per a recent estimate, 80% of the employers use social media networking sites to research job seekers. And in the area of training and development also, job candidates who develop skills in the latest and most advanced social media techniques are far more employable people. Blogs, wikis, LinkedIn, etc. are now common tools for learning online in many educational institutions. 70% of the students and 65% of their parents believe that social media will be a useful tool and a new norm of learning. And coming to the advantages of social media, in the past 10 years at least, it has grown exponentially because of its connectivity, information, education, awareness, easy sharing of things for building communities, for noble causes, and for upkeeping mental health. And if we look at the disadvantage of social media, it causes hampered emotional bonds, decrease face-to-face conversations, disappearance of true sense of love and affection, distress, lack of understanding, disrupted relationships in families, falling victim to cyberbullying, and then addiction also. We know knowledge is, information is knowledge, and knowledge is power. Therefore, information is power. And without a means of distributing information, people cannot harness this power. A positive impact of social media is in the distribution of information. Social media platforms have made it possible to access information at the click of a button. And social media is everywhere, just of a minute. And to conclude, we can say that the world would be a much slower place without social media. It has caused harms as well as good to the society. The positive impact of social media on the present day society is astronomical, that is very huge, and far surpasses the negative impact associated with that. Rules and their enforcement may not be enough to regulate things in a society by the government. It is always spiritually empowered human wisdom. I repeat, spiritually empowered human wisdom can make use of every facet of technology for the welfare and happiness of the people at large. Thank you. Om Shanti.
Thank you, Brother Vai Babji, aapka. नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाने से पहले हमारे बीच में आरती त्रिपाठी जी पहुंच गए हैं. मैं बहनों से निवेदन करूंगी आरती जी का बुके बैच और साफा पहना के उनका स्वागत करें. सोशल मीडिया पे एक ऐसी टेक्निक है जिसके बिना सोशल मीडिया और हम सभी मनुष्य आत्माओं का जीवन भी शायद अधूरा सा है. क्या हो सकती है वो मेथड या टेक्निक? वो है एंटरटेनमेंट. और हम सभी जानते हैं एंटरटेनमेंट का हिस्सा हमारे जीवन में किन की वजह से है? जी, आर्टिस्ट, कलाकार की वजह से. ऐसे ही एक अपनी कलाकारिता को लेकर हमारे बीच में आज एक आर्टिस्ट आरजे उपस्थित है, भ्राता दिलीप जैन जी. आप थिएटर आर्टिस्ट, एक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट है. आपको एफएम रेडियो में आरजे का 20 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है. आप ऑल इंडिया रेडियो, एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो के आरजे रहे हैं. आप होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में अपना ग्रेजुएशन कर चुके हैं. आपने बहुत से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है, भ्राता दिलीप जैन जी.
ओम शांति. मेरे साथ अगर आप सब कहेंगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा हम यहाँ पे महसूस कर पाएंगे. रेडियो की दुनिया से आता हूं तो चाहता हूं कि आवाज के माध्यम से आप भी जुड़े हमारे साथ, एक साथ कहेंगे ओम शांति। और सकारात्मक ऊर्जा एक और तरीके से उत्पन्न होती है, वो अब सब जानते हैं, वो तरीका है तालियों की गूंज। तो एक बार हो जाए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। मंच पर आसीन जितने भी मान्यवर हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि मुझे आज इस मंच पर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई कुछ बातें शेयर करने का मौका दिया है। समय हुआ है 5:10, रेडियो पर काम करता हूं तो समय बताने की आदत है, 10 मिनट का समय है और इस 10 मिनट में बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करने का मैं प्रयत्न करूंगा। रेडियो का एक जमाना वो था जब आवाज के माध्यम से ही हमें पहचाना जाता था। कई ऐसे लेजेंड्स हैं रेडियो के जिनकी आवाज सुनते ही आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब रेडियो ये नाम लेता हूं तो आपके जहन में भी नाम आता होगा किसी न किसी का, क्या क्या नाम आते हैं? जी हां भाई और बहनों, अमीन सैनी सर लेजेंड। तो वो दौर मैं इसलिए बात कर रहा हूं, विषय सोशल मीडिया का है मैं जानता हूं, लेकिन वो दौर वो था जब लिसनर्स यानी कि हमारे सुनने वाले तब भी अपने मन के भाव, अपने सुझाव, अपने पसंदीदा गीतों की फरमाइश हम तक पहुंचाया करते थे। लेकिन उस वक्त माध्यम क्या था, शायद मेरी ओर देख के आपको ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन मैं पोस्टकार्ड के जमाने से ही हूं, अंतर्देशीय पत्र जो होते थे उसी जमाने से हूं, तो पोस्टकार्ड लिखा करते थे। ये बात ऑल इंडिया रेडियो की है जहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। हर हफ्ते खत आपके गीत हमारे नाम का जो शो मैं किया करता था उसमें इतने सारे खत आया करते थे। फिर एक एक करके हम लोगों के अभिप्राय को पढ़ा करते थे, उनके पसंदीदा गीत के बारे में बात करते थे। और खास बात यह है कि मैंने उन पत्रों को आज भी संभाल के रखा है, संजो के रखा है। अब वो भी एक तरह से अभिप्राय था या किसी ने अपनी पसंद का गाना सुनने की चाह रखी थी, लेकिन उनकी कही हुई बातें मेरे पास संजो के रखी हुई है। सोशल मीडिया पे ये संभव नहीं है, फोन की मेमोरी फुल हो जाएगी। आपको भी समय समय पर फोन की मेमोरी को खाली करना पड़ता है। इस मुद्दे पर भी हम आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा सोशल मीडिया आया, और ये होगा, अभी जब हम बात कर रहे हैं तब भी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जैसे डॉक्टर सोमनाथ वडनेरी भी बता रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कैसे एंकर्स को रिप्लेस कर दिया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए एंकर्स के द्वारा। चैट जीपीटी पर आपको जो चाहिए आप कहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी तो अपनी गति से आगे बढ़ेगी, लेकिन हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। तो मैं सोशल मीडिया को एज अ टूल कोसता नहीं हूं। सुबह के सेशन में बहुत अच्छी बात कही थी कि वो एक टूल है, उसके इस्तेमाल करने का तरीका हमें जानना है। और कहीं ना कहीं हम ये सब जानते हैं कि उसके इस्तेमाल करने के तरीके में हमसे चूक हो रही है। सहमत है आप लोग? एक स्वर में कहिए, सहमत है? चलिए, क्योंकि ये मंथन का विषय है, इसीलिए हम जब मंथन करेंगे किसी बात पर तभी शायद रास्ता निकल कर आएगा। सो पहला कदम होता है एक्सेप्टेंस का, जो हमने एक्सेप्ट किया अभी कि हाँ शायद कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है इस टूल को इस्तेमाल करने में। सही तरीका क्या होना चाहिए, अब सही और गलत का फैसला करने वाला मैं नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी होती है। अच्छी से मेरा मतलब ये कि हमें मदद करती है हमारा ही बेटर वर्जन बनने में, तो वो चीजें हम सब जानते हैं, तो क्यों ना उन चीजों के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाए। मैं सोशल मीडिया को एक तरह से वरदान मानता हूं, और जब जब टेक्नोलॉजी ने कुछ कमाल किया है तो वो वरदान साबित हुआ है, लेकिन अगर इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया गया तो वो शाप भी साबित होता है। आजकल हम सोशल मीडिया को शाप की तरह भी देखते हैं, क्योंकि परिवार के लिए दिया जाने वाला समय कम हो गया है। अगर कहीं बाहर जाते हैं तो परिवार के ज्यादातर सदस्य अपने फोन में बिजी होते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन अगर हम इसे सकारात्मक तरीके से देखें और इसके सही इस्तेमाल की बात करें तो बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ किया जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कनेक्टिविटी कितनी शानदार हो गई है हम सबकी। हम सब के फोन में अपने अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप तो जरूर होंगे, हम में से कईयों के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रोफाइल भी होंगे, तो तुरंत आपने वहां जो कुछ डाला वो आगे जहां तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाता है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप के जरिए आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। मैंने खुद कुछ नॉलेज एनहेंसिंग के लिए कोर्सेज किए, इंफॉर्मेशन अपडेट्स ये सारी चीजें मिलती है। हम कई बार जो बात वर्बली नहीं कह सकते वो टेक्स्ट मैसेज के जरिए कह देते हैं, कई बार हिचकिचाहट होती है। तो तरीके की बात अगर हम करें तो बहुत सारे बेनिफिट भी है, जिसमें से एक बेनिफिट के बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा। किसी नोबल कॉज के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इस वक्त जब मैं इस मंच से बात कर रहा हूं तो हमारे अपने रेडियो स्टेशन पर बिग एफएम पर एक बहुत नोबल कॉज के लिए कैंपेन चल रहा है, उसका नाम है घर घर अंगदाता। हम मुंबई के लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने ऑर्गन्स यानी कि अंग प्लेज करें, इस दुनिया से जाने के बाद अगर वो ऑर्गन्स किसी के लिए काम आ सकते हैं तो इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है। और इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोगों से रजिस्ट्रेशन मंगाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपील करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि रितेश देशमुख, उन्होंने अपने ऑर्गन को अपनी वाइफ जेनिलिया के साथ प्लेज किया है, उन्होंने इस कॉज को सपोर्ट किया है। तो ये एक तरीका है जिसके जरिए सोशल मीडिया के टूल का बिल्कुल सही इस्तेमाल किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए सोशल मीडिया को हम अक्सर कोसते हैं, लेकिन अगर उसे सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कम्युनिटीज बन सकती है सोशल मीडिया के जरिए लोगों की, जो किसी एक तरह के डिजीज से सफर कर रहे हैं। जब एक दूसरे से एक दूसरे के दर्द को बांटते हैं तो वो दर्द कम हो जाता है। कोई उसी मुश्किल भरे दौर से गुजरा है तो उसके अनुभव को जानते हैं तो तकलीफ कम हो जाती है, तनाव कम हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी उतने ही बड़े हैं सोशल मीडिया के। हर सिक्के के दो पहलू हैं, सकारात्मक नकारात्मक। आज क्यों ना हम जो बातें कर रहे हैं, जो मंथन कर रहे हैं, यहां से एक सकारात्मक इस्तेमाल लेकर यहां से निकले। एज मीडिया पर्सन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टूल का इस्तेमाल सबसे पहले तो हम सही ढंग से करें, फिर हमारे घर वालों को बताएं, हमारे आसपास के लोगों को बताएं। जैसा कि निकुंज भाई जी ने भी कहा था कि वो बदलाव की शुरुआत हम से होनी चाहिए, हमारे आसपास के लोगों से होनी चाहिए, इतना संकल्प हम जरूर कर सकते हैं। 3 मिनट का समय और है मेरे पास, 5:17 हुए हैं। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो जो मैसेज हम टेक्स्ट के जरिए या डिजिटली कन्वे करते हैं वो बात उस तरीके में नहीं जैसे इस वक्त मैं आपसे कर रहा हूं। रूबरू किसी को सुप्रभात कहना, गुड मॉर्निंग कहना, गले से लगाना, ये जो बातें हैं ये डिजिटल मीडिया के जरिए संभव नहीं। लोग फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन वो सेलफोन, वो सोशल मीडिया उनको मेंटली प्रेजेंट होने नहीं देता। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, हम अपनी लाइफ को किसी और की जिंदगी के साथ कंपेयर करते हैं, और ऐसी जिंदगी वो सामने वाला व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर दिखा रहा है, जो शायद उसकी असल जिंदगी नहीं है, चमक धमक से भरी हुई जिंदगी नजर आती है और फिर हम कहते हैं मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है। ग्रेटिट्यूड की कमी आ जाती है, कृतज्ञता की कमी आ जाती है, ये भूल जाते हैं कि वो जो कुछ दिखा रहा है वो सच्चाई नहीं है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। हम अपनी तस्वीर सबसे अच्छी वाली ही पोस्ट करेंगे। ये हर किसी के साथ होता है और यहां कंपैरिजन के ट्रैप में हम कई बार फंस जाते हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल, गलत इंफॉर्मेशन, गलत चीजों को फैलाने के लिए किया जाता है और उससे समाज में अनरेस्ट हो जाता है। मैं अपनी बातों को विराम सॉल्यूशन से देना चाहता हूं। बातें बहुत हुई लेकिन सॉल्यूशन क्या है, क्या किया जाए, जिम्मेदारी निभाई जाए, किस तरह से निभाई जाए, प्रैक्टिकली क्या करें हम। एक शब्द है अंग्रेजी का थिंक। थिंक की स्पेलिंग क्या है, टी। मैं आपको मतलब पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं लेकिन मेरी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि थिंक की स्पेलिंग है टी एच आई एन और के, थिंक, राइट। तो कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट करने से पहले थिंक हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, टी से, वेदर इट इज ट्रू, क्या ये सच है। मेरे पास मैसेज आया, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, पर क्या आपने तहकीकात की कि ये सच है, क्या रिसोर्स था आपका। थिंक, थिंक का टी कहता है कि पहले सोचिए, वेदर इट इज ट्रू। थिंक का एच हमें कहता है कि जो मैं पोस्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं, इज इट हेल्पफुल, क्या ये किसी की मदद करेगा, क्या इसको भेजने से किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, वेदर इट इज हेल्पफुल। टी एच आई से है इंस्पायरिंग, अगर मैं ये मैसेज किसी को भेजू तो क्या वो खुद का बेटर वर्जन बनेगा, उसकी जिंदगी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी। उसके बाद आता है एन। एन से अंग्रेजी का शब्द है नेसेसरी, क्या ये जरूरी है, क्या ये जरूरी है, ये मैसेज फॉरवर्ड करना जरूरी है। ट्रू, हेल्पफुल, इंस्पायरिंग, नेसेसरी और आखिर में है के, यानी कि काइंड, क्या इसमें सही शब्दों का चुनाव किया गया है, क्या इसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्द है, अगर है तो मैं हटा दूं। इतना जरूर हम कर सकते हैं अगली बार सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले, थिंक, और थिंक से जो बातें कही है उनको याद रखिएगा। आप और हम मिलकर एक सकारात्मक बदलाव जरूर लाएंगे। अंत में मेरी बातों को इसी बात से विराम दूंगा कि सोशल मीडिया के जरिए ही एक पॉडकास्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है लव यू जिंदगी, जहां पर हम बात करते हैं कि हम अपना बेटर वर्जन कैसे बने, तनाव मुक्त कैसे रहें। और इसके लिए मैं निकुंज भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरी इस रिक्वेस्ट को माना और मेरे उस पॉडकास्ट का वो हिस्सा बने। आप भी जरूर सुनिएगा लव यू जिंदगी, द पीस पॉडकास्ट, समा चाहता हूं, लव यू जिंदगी मेरे शो का नाम है, द पीस पॉडकास्ट, जो आप सोशल मीडिया पर जरूर देख सकते हैं। ये भी एक तरीका है सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय समाप्त हुआ है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
थैंक यू दिलीप भाई, आपने अपनी आवाज की रूहानियत से ही हम सबके मन में, दिलों में, दिमाग में कौन से हार्मोन्स क्रिएट कर दिए। आप हैप्पी नहीं हुए, हुए नहीं हुए तो एक बार तालियों की गूंज से बता दीजिए कि आपकी बातों से हम वाकई बहुत हैप्पी हुए हैं और इन सभी अच्छी अच्छी बातों को हमारे जीवन में हम जरूर से उतारेंगे। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी नागपुर से डॉक्टर पी शिव स्वरूप जी आपको। आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के सीनियर रीजनल डायरेक्टर हैं। आपने केमिस्ट्री में अपनी पीएचडी पूरी की है और आपको बेस्ट थीसिस अवार्ड भी मिला हुआ है। आपने 10 अलग अलग सब्जेक्ट में अपना पीजी और डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है। आपको 2022 में आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड से भी नवाजा गया हुआ है। आपको बेस्ट सर्विस रीजनल सेंटर के लिए नेशनल गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। आपने 35 पेपर्स और 3 बुक्स भी पब्लिश की हुई है डॉक्टर पी शिव स्वरूप जी।
ओम शांति। सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज सुबह हम सभी राजयोग का सेशन अटेंड किया है ना। वो सुनने के बाद मुझे लगा कि मेरा शुरुआत अलग तरीके से होना है। सभी आत्मा या सभी आत्मीय साथियों, यही कहा कि मुझे तो ये कहना चाहिए कि हमारा माता पिता ने इस शरीर को नाम दिया है शिव स्वरूप, ठीक। बट मेरा नाम पढ़ने के लिए लोग अलग अलग नाम से पुकारते रहते हैं। कोई पहले शिव को रख के बोलते शिव प्रसाद, शिव कुमार, शिव स्वामी, और कोई बोलते हैं सेकंड हाफ को रख के प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप और आत्म स्वरूप, बहुत सारे नाम से पुकारते रहते हैं। प्रॉब्लम है प्लेंटी ऑफ नेम्स, क्योंकि मुझे क्लैरिटी है तो इसलिए दिक्कत नहीं है। आज के जमाने का मेन प्रॉब्लम क्या है, वही है प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी। आजकल हर चीज का बहुत सारी मिलते रहते हैं। पहले तो आप कभी होटल जाते हैं तो इडली डोसा या चार पांच आइटम मिलते थे, अभी तो इतना सारी लिस्ट है आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। फैमिली में एक बात आने के लिए भी बहुत टाइम लग जाते हैं, सही है ना। तो ये प्रॉब्लम है, हमारे बचपन में तो हमको ज्यादा दिखाता नहीं है, क्योंकि उस समय जो हमको दिखता है आसपास में वही हमारा इच्छा रहती थी। जैसा साइकिल खरीदना या कहीं पिक्चर में जाना है, इतना ही है। बट आज के बच्चे को आप एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आप कभी उनको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं लोगों को। ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी को ये कैसे हम डील करना है, क्योंकि ये मीडिया है, ये हमारी आइडियाज को मैनिपुलेट कर देते हैं, हमारा विजन को, हमारा सोच को मैनिपुलेट कर लेते हैं। वो दिखाता है कि ये मोबाइल यूज करेगा तो आप तो नौकरी जल्दी मिल जाएगा, मिलता है क्या, नहीं मिलता है। बट जो नौकरी के लिए ढूंढ रहे वो सोचते ये करने में मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो ये मैनिपुलेटिंग मीडिया है, ये सोशल मीडिया आने के बाद और बहुत सारी हो गया है। और कभी कभी ये लगता है क्या हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं या हमको सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। जैसे अभी सोमनाथ जी ने बताया YouTube से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहे, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, मार्केटिंग भी बहुत बढ़ रहे। YouTube बहुत लोग देखते रहते हैं। अभी YouTube वालों का एक अनाउंसमेंट आया कि उन्होंने कितने पैसा दिया होगा YouTube में आप वीडियो बनाते हैं ऐसे लोगों के लिए, उन्होंने 1,000 करोड़ का पेमेंट किया है YouTube वालों ने। मतलब उन्होंने YouTube क्रिएट करने वालों के लिए 1,000 करोड़ दिया है, उसी में एडवर्टाइजमेंट देने वाला को कितना बिजनेस आया होगा आप सोच लीजिए। इसलिए कभी कभी लगता है सोशल मीडिया हमको यूज कर रहे हम उसको यूज करने के बजाय, ठीक। और आज के जमाने में इंफॉर्मेशन फ्लो इतना ज्यादा है, क्या सच है क्या गलत है हमको पता नहीं है। यदि इतना एज होने के बाद हमको अभी खुद को कंफ्यूजन है तो बच्चे के क्या हालत बनेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये होगा कुछ हम मोटिवेटिंग एग्जाम्पल्स, मोटिवेटिंग रोल मॉडल्स को दिखाना है बच्चों को, जो यूज करके आगे बढ़ा है जिंदगी में। इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मीडिया एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ऐसे मॉडल्स को दिखाने के लिए। रिसेंटली हमारा इग्नो नागपुर से एक जेल में रहते हुए स्टूडेंट किसी वजह से जेल में गया है, वो कुछ कॉलेज में फाइटिंग हुआ तो किसी दूसरे बच्चे को डेथ हो गया है, वो एविडेंस है इसलिए वो जेल के अंदर चले गए हैं। उनको पढ़ने की मौका हमने दिया है इग्नो के थ्रू, उन्होंने बीए किया है, एमए किया है, बाहर आने के बाद सजा पूरा करके वो टीचर बन गया है, ठीक। और हमको यह अच्छा लगता है कि नागपुर मीडिया के साथ वो एक फेमस लीडिंग मराठी न्यूज पेपर में न्यूज पब्लिश किया है, स्टोरी किया है, वो एक इंस्पिरेशनल स्टोरी होते हैं, रोल मॉडल बनते हैं लोगों के लिए। ऐसे स्टोरीज की जरूरत है। तो अभी मैं आगे आपको 3 एग्जाम्पल्स या 3 स्टोरीज, छोटे छोटे स्टोरीज बताता हूं, सो दैट हमको There is a saying in English, theory is better, example is better than perception. आप कितने भी theory पढ़ाओ उससे ज्यादा है दो तीन example बताओ, लोग अपने अपने हिसाब से सोचते रहते हैं कैसा आगे बढ़ना. हम सोचते रहते सोशल मीडिया इसी सेंचुरी का है, 2004 में फेसबुक वगैरह चालू हुआ है. पिछले सेंचुरी में सोशल मीडिया क्या था, कुछ था क्या 20th सेंचुरी में? मैं आपको बताता हूं, एक नाम मैं बताता हूं, जो एक गांव की लेडी है डॉक्टर सीतम्मा करके, 1841 में पैदा हुआ है, 1909 में उनकी डेथ हुआ है. आज भी उनकी फोटो फ्रेम करके लंदन की जो चक्रवर्ती रहते हैं राजा, उनकी पैलेस में टंगा हुआ है. एक टाइटल है, दी मोस्ट चैरिटेबल वुमेन ऑफ साउथ इंडिया. तो इतना नाम कमाया उन्होंने, वो कोई टाटा बिरला की लाडली नहीं है, वो एक आम हाउसवाइफ है. उनको जो भी भूखा रखा उनके घर में आके दरवाजा खटखटाते हैं वो खाना खिलाती थी. ऐसे 40 साल किया है, उसमें कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, रात को भी आते हैं तभी वो चूहा जल हो. चूल्हा जला के खाना बनाती थी, रात को 2 बजे भी कोई गए वो खाना बना के खिलाती थी. ठीक है, यदि कोई आके दरवाजा खटखटा है वो भूखे फिर वापस गए ये नहीं होना, इसलिए वो 40 साल कहीं गया भी नहीं है. ये भी एक कंडीशन है कि
योग लगाकर पाप मिटाले स्वर्ग सजा ले तुआर. काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज सब मोहताज. योग लगाकर पाप मिटाले स्वर्ग सजा ले तुआर. अब तो यही ज्ञान का दार.
तो उस समय का जो लंदन का किंग एडवर्ड सेवन है, उन्होंने हमारा उनकी रॉयल फंक्शन में उनको बुलाया, आप आ जाओ हमारे लिए एक इज्जत की होगी। बट उन्होंने बोला मैं जाता हूं तो यहां भूखे लग जाएगा लोग, इसलिए मैं नहीं आता हूं। आप देख लीजिए उनकी कर्तव्य की तरफ दो कितना डेडिकेटेड है। तब किंग एडवर्ड ने बोला है कि एक फोटो लेके उनको भेज दो फ्रेम करके, और उनकी फ्रेम लेके गया है प्रोग्राम में, उन्होंने एक चेयर में लगा के उसको माला करके उनकी प्रेजेंस में उन्होंने अपनी फंक्शन कराया। तो इसमें सोशल मीडिया कहां से आया है, उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, लोगों की मदद करना है, वो अच्छे डीड्स हैं, गुड डीड्स, वो कहीं भी आपको फ्रेंडशिप को बना देते हैं दुनिया भर। वो एक छोटी गांव में रहते हुए भी ब्रिटिश का एम्परर तक उनकी नाम पहुंच गया है, और वो आएगा तभी हम ये फंक्शन करेंगे करके उन्होंने जिद मारा। सोशल मीडिया में हम क्यों पोस्टिंग करते हैं, हमारे लिए पब्लिसिटी चाहिए, हमको पूरा दुनिया में लोग जानना चाहते हैं हमारे अच्छे वर्क को। ठीक है, एक एग्जाम्पल है और दो ही बताते हैं। I'll just complete it. हम नागपुर जेल में रेडियो को भी यूज करते हैं, प्रिजनर जो जेल के अंदर रह के भी लेसन सुनते हैं और उनके लिए हम पढ़ाई करते हैं, ये भी एक पॉजिटिव यूज है मीडिया के लिए। और जो कुरखेड़ा एक गांव है गढ़चिरौली में, गढ़चिरौली एक इंटीरियर ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, उतना अंदर वो नक्सलेट अफेक्टेड एरिया, फिर भी उधर से महिला हमारा कोर्सेस में एडमिशन लेते हैं। जब हम कोरोना टाइम में सोशल मीडिया में सेशंस रखते हैं, हम पूछते हैं उनको आपको कौन सा मीडिया चाहिए, उसमें आपको कन्वीनियंट है, आपको आश्चर्य होगा कि वो खुद पूछते हैं सर आप कौन सा मीडिया यूज करते हैं बताइए हम लगा देंगे। तो इसका मीनिंग है यदि आप यूज करना चाहे सोशल मीडिया इज अ बून, अदरवाइज इट विल बी ए बेन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू डॉक्टर शिव स्वरूप प्राता जी। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी सिस्टर आरती त्रिपाठी जी, आप दिल्ली से हैं, आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। सिस्टर आरती त्रिपाठी जी,
ओम शांति। हमारे मंचासीन अतिथिगण और सामने हमारे बैठे हुए मीडिया पर्सन्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। मैं स्वागत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले 25 वर्षों से ज्यादा टाइम हो गया है मुझे ब्रह्मा कुमारी आते हुए, तो आज मुझे कहीं भी ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि जो आज मुझे ये ऊंचाइयां मिली हैं उसमें कहीं ना कहीं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर है। सोशल मीडिया का समाज पर प्रभाव, हमारे सामने मीडिया के लोग ही बैठे हैं, तो वो बेहतर जानते हैं कि नेगेटिव न्यूज या फेक न्यूज का हमारे समाज पे हमारे छापने के बाद या हमारे चैनल्स पे चलाने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और इंटरनेट ने आज हमें जहां बहुत आसान कर दिया है हमारी बात को पूरे समाज में एक क्लिक के साथ आप सेकंड्स में भेज सकते हैं कहीं भी, उसी के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। जिम्मेदारियां इसलिए कि हम समाज को क्या देने जा रहे हैं, क्या हमने उसे जांचा परखा है या नहीं, ये पहले देखना जरूरी है। उसके अलावा हम अपने पास से पॉजिटिविटी ही परोसें समाज के लिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया आज व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पे हम कहना गलत नहीं होगा कि हमारे बीच के जो हमारे समाज के लोग हैं वो भी एक पत्रकार का ही काम कर रहे हैं आजकल. वहां पर ये नहीं होता है कि वो पहले जस्टिफाई करें या उस चीज को जांचे परखे कि वो क्या सोशल मीडिया पे पोस्ट करने जा रहे हैं. पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें आगे क्या दे रहे हैं, क्योंकि हम जो परोसते हैं मीडिया के लोग उसको वो लोग बिना जांचे परखे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ ये मीडिया से आया है तो ये बात सत्य है. इस वजह से सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने के पहले हमें जांचना परखना जरूर चाहिए. मैं थोड़ा सा विषय से पृथक जाना चाहूंगी. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी मैं सदस्य हूँ, ये काउंसिल हमारी इस बीच में अभी हमें चेयरपर्सन नहीं मिली थी, जिसके कारण 6 महीने तक काउंसिल का काम रुका हुआ था और बहुत सारे मैटर्स कंप्लेंट्स पेंडिंग रह गए. लेकिन जब से अभी हमें चेयरपर्सन मिली है, आप RTI के थ्रू तो आजकल बहुत आसान है, आप इसके बारे में पता कर सकते हैं कि जो भी समाचार पत्र प्रकाशकों या समाचार पत्र से संबंधित हमारे पत्रकारों की कोई अगर प्रताड़ना हुई है कहीं पर, तो उसको लेके हमारी काउंसिल ने तुरंत उस पर एक्शन लिया है. और कई एक केसेस हैं जिसपे हमने जो वहां की अथॉरिटीज थी जिनके द्वारा प्रताड़ित किया गया था या हैरस किया गया था, तो उनपे एक्शन लेके तुरंत उनको न्याय दिलाया है. तो प्रेस काउंसिल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से काउंसिल निभा रही है. और इसी के साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो हम लोग यहाँ से पॉजिटिविटी लेके जा रहे हैं उसको हम अपनी कलम के जरिए समाज में जरूर परोसें. और आपने ध्यान दिया होगा, थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, आधे घंटे एक घंटे में बीच में सडन एक हम लोगों को ब्रेक दिया जाता है कि हम कुछ मिनट के लिए अपने शिव बाबा से कनेक्ट हो. अगर हम ये जो यहाँ पर कर रहे हैं आगे भी हम अपने जीवन में भले एक मोबाइल सबके पास है, एक घंटे के लिए एक अलार्म सेट कर लें कि उस 2 मिनट के लिए हम अपने शिव बाबा से या अपने भगवान से, अपने शिव बाबा से 2 मिनट के लिए समय निकाल के कनेक्ट करें, तो उस पॉजिटिविटी के साथ हम और तेजी से काम कर सकते हैं और पॉजिटिव होकर समाज को चीजें परोस सकते हैं. थैंक यू सो मच. ओम शांति.
थैंक यू बहन आरती जी, आपने बहुत सुंदर तरीका बताया परमात्मा से कनेक्ट होने का. जिस तरह से रोड पर हम गाड़ी चलाते हैं तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रोड पे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, ऐसे ही कहते हैं सारे दिन भर हमारे दिमाग में बहुत तरह के विचार आते हैं, तो इस विचार को कंट्रोल कैसे किया जाए. आज का मनुष्य इस विचार को ही कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसलिए इतने सारे रिलेशंस में एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं. तो ये जो 1 मिनट का अलार्म सेट करने की आपको टेक्निक बताई है, ये 1 मिनट में आप अपने अंदर अपने परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं. शुरू शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन आप उस 1 मिनट में अपने अंदर कुछ सकारात्मक विचारों को क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आगे कार्य करने में भी आपको वो पॉजिटिव एनर्जी बहुत हेल्प करे. अगला गेस्ट ऑफ ऑनर मैं बुलाती हूँ डॉक्टर कमलेश मीणा जी. आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत है. वर्तमान समय में आप सहायक निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना पंजाब के रूप में कार्यरत है. आपको दूरदर्शन केंद्र पटना बिहार और दूरदर्शन केंद्र जयपुर राजस्थान के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2020 में अपने विचार रखने का भी अवसर मिला. आपने कश्मीर घाटी, लद्दाख क्षेत्र ऐसे दूर 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 दराज इलाकों में भी उच्च शिक्षा देने का आपको अवसर मिला हुआ है. आप 2005 से प्रभा कुमारी से जुड़े हैं और विभिन्न विषयों पर आपने इस कॉन्फ्रेंस में अपने विचार व्यक्त किए हैं. डॉक्टर कमलेश मीणा जी,
ओम शांति. प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, राजयोग योगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन एंड मीडिया विंग के माध्यम से आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए जो आपने हमको इनविटेशन दिया है, मैं उसके प्रति प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि बहन योगिनी दीदी ने बताया कि मुझे इस विश्वविद्यालय से एक लंबा अरसा हो गया, काफी समय से मैं जुड़ा हूँ और लगभग 18-19 साल से मैं आपके बीच में आ रहा हूँ और लगातार मैं आपकी इस कॉन्फ्रेंस में साल में कम से कम एक बार आने का मुझे मौका मिलता है। आज एक महत्वपूर्ण विषय में जो हमारी कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, एम्पावर्ड मीडिया फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी, विश्व शांति के लिए सद्भाव और उसकी भूमिका, सशक्त उसके लिए मीडिया की भूमिका पर, जैसे इम्पोर्टेंट विषय पर हम, आप हर साल हमको बुलाते हैं, चिंतन मनन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और मुझे इस बात का गर्व है, इस बात की फकर मुझे इस बात को हमेशा रहती है कि मैं इस विश्वविद्यालय के माध्यम से न केवल मीडिया प्रोफेशनल टीचर्स के साथ मेरा जुड़ाव हुआ है बल्कि स्टूडेंट्स के साथ, पत्रकार बंधुओं के साथ, संपादकों के साथ और मैनेजमेंट फील्ड से जुड़े हुए अलग अलग मीडिया फ्रेटर्निटीज के प्रोफेशनल के साथ मुझे जुड़ने का मौका दिया है, उसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। आज का जो पहला प्लेनरी सेशन रखा उसका इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, जैसे एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर रहे हैं। आप हम इस बात उस दौर में आते हैं, कहीं हमारे सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता तुल्य लोग बैठे हैं जो उन्होंने इस दौर को देखा है कि हम उस दौर के वासी हैं जब ये कहा जाता था रोटी कपड़ा और मकान इस देश की मूलभूत आवश्यकता है और रोटी कपड़ा मकान के बाद में रोटी कपड़ा मकान से रोजगार और शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा हमारी जरूरत बनी। आज हम 21st सेंचुरी में रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार से आगे बढ़कर सोशल मीडिया के एरा में एंट्री कर रहे हैं। आज मैं इस बात का गर्व मुझे इस बात का है कि 96 से मैं आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं और कई लोग इस बात से वाकिफ है कि हम उस दौर के व्यक्ति हैं जब कंप्यूटर आया था, सीडी कमांड के थ्रू हम कंप्यूटर को ऑपरेट किया करते थे, लेकिन आज हम सीडी कमांड वाले लोग आईटी के दौर में किस तरह से एंट्री कर गए, हमने उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन लगातार उसके साथ जुड़ने के बाद कब हम कौन से फेज में एंट्री हो गए हमको मालूम ही नहीं पड़ा। और मैं इस बात को भी बड़ा फक्र के साथ कहता हूं कि जब भी कोई नई चीज आती है तो निश्चित रूप से उसका फायदा सबसे ज्यादा हमारे मुआसरे के लोगों को मिलता है। और डॉक्टर सोमनाथ जी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब जो मूक नायक अखबार निकाला था उसके पीछे कंसेप्ट था द वॉइस फॉर वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल, मूक ऐसे लोगों की आवाज देना उस अखबार के माध्यम से जिनका अपना कोई वजूद नहीं था, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, लेकिन डेमोक्रेसी में ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उन लोगों को प्रतिनिधित्व कौन देता है, किसके माध्यम से उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाएगी, यही विजन लेकर बाबा साहब ने वो अखबार निकाला था। उसके बाद जब बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला 1949 में, बाबा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप कितना ही अच्छा संविधान बना लीजिए अगर उसको लागू करने वालों की मनसा इरादे अच्छे हैं तो बुरा संविधान भी अच्छा साबित होगा, लेकिन लागू करने वालों की मनसा अगर ठीक नहीं है तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित होगा। यही चीज हमको जीवन में फॉलो करने का जरूरत है। कोई भी चीज इजाद होती है, कोई भी चीज दुनिया में आती है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए आती है, दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आती है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले किस लहजे से, किस विजन के साथ, किस इरादे के साथ उसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे इस बात का फख्र है कि हमने याहू मैसेंजर के दौर से सर हम जुड़े हैं। याहू मैसेंजर को कितने लोगों ने यूज किया है मुझे नहीं पता, याहू मैसेंजर से लेकर आज सोशल मीडिया तक, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जितने भी नए मीडिया टूल्स आज आए हैं, मुझे इस बात का फख्र होता है कि मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत अच्छे इरादे के साथ उसका इस्तेमाल किया है। प्लीज नेक्स्ट। तो जब हम पत्रकारिता के फील्ड में आए थे तो ये सोच के आए थे कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं हैं। कई सारे मेरे पत्रकार आज भी इसी इरादे से आते हैं, मुट्ठी में कई सपने लेकर जेबों में भर के आशाएं हैं, दिल में ये अरमान यही कि कुछ कर जाएं। यही सोच के मैं इस मीडिया फील्ड में आया, लेकिन मुझे बड़ा निराशा के साथ इस बात को कहना पड़ता है
और कई बार लोग मुझसे कहते हैं कि मीडिया ने तो बड़ा आपको ऑनर दिया, बड़ा सम्मान दिया, आपको इतना इज्जत दिया, लेकिन मैंने कहा मैं बिल्कुल इस बात से मुतासिर हूँ, इस बात को बड़ी ईमानदारी से एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे बहुत ऑनर मीडिया से मिला है, लेकिन मुझे तो ऑनर मिला लेकिन मेरे समाज को नहीं मिला, मेरे व्यक्ति को नहीं मिला, मेरे देश को नहीं मिला। और आपकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, और इसी निराशा भाव से मैंने 2008 में प्रिंट मीडिया को मैंने छोड़ा। मैंने कहा कि हम तो बड़े सपने लेके आए थे, ये करेंगे, इतना बदलाव करेंगे, लेकिन वहां आके 3 साल की पत्रकारिता में मुझे एहसास हुआ कि मेरे जैसा गांव देहात से आने वाला व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति मीडिया में रह नहीं सकता, सच बोल नहीं सकता, आपको वही बोलना पड़ेगा जो आपके मालिकों को पसंद है। हमने कहा हमको मंजूर नहीं आपकी पत्रकारिता, आप अपनी पत्रकारिता रखिए, लेकिन रहेंगे पत्रकारिता के अंदर। ये बात सही है कि हम पत्रकार के लिए सूट नहीं थे, हमने वो प्रोफेशन छोड़ना मुनासिब समझा, लेकिन हमारे मूल्यों के साथ हमने समझौता नहीं किया। 2015-5 में हम जब आए, 2005 में जब ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के साथ हमारा जुड़ा, तो मैं आपके विश्वविद्यालय के लिए कहूंगा कि मुझे उस दौर में, उस संकट के दौर में वो सिंबल, वो ताकत, वो हौसला आप लोगों ने दिया उस दौर में, वरना मैं टूट चुका था। मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, मुझे नहीं पता था कि कौन सी राह अडॉप्ट करनी है, क्योंकि पत्रकारिता में मैं फेल साबित हो चुका था। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, और मैं आपके लिए इतना ही कहूंगा कि किस तरह से शुक्रिया कहे आपको, किस तरह से शुक्रिया कहे आपको, जमीन से उठाकर दिल में बिठा लिया, जमीन से उठाकर दिल में बिठा दिया, इतना प्यार दिया आपने हमको कि बिखरे जीवन को संवार दिया, बिखरे जीवन को संवार दिया। और मैं हमेशा इस बात की पैरवी करता हूँ, इस बात की एडवोकेसी करता हूँ कि डेमोक्रेसी में जब बात मीडिया की होती है, फोर्थ पिलर की बात होती है, हमको इस बात से भी गुमान नहीं होना चाहिए। ऑफिशियली वी आर नॉट द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, भाई नोइंगली भाई अनोइंगली भाई किसी न किसी बहाने से हमको चौथा तमगा मिल गया, लेकिन उस तमगे को लेने से के साथ में जिम्मेदारियां हैं। प्रोफेसर दीक्षित साहब ने कहा कि आप किसको दोष देते हो, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जितना डिक्लाइन सोसाइटी में हो रहा है, कोई प्रोफेशन खराब नहीं है, सारे प्रोफेशन, सारा जो भी डिपार्टमेंट है, उन सबका इरादा है कि अच्छा काम हमारी सोसाइटी देश के लिए करे, लेकिन व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। तो जिम्मेदार वो महकमा नहीं है, जिम्मेदार वो इदारे नहीं है, जिम्मेदार कहीं कहीं हमारी सोसाइटी है। और जो मूल्य हमने खो दिए हैं, जो जिम्मेदारी हमको मिली थी उस इदारे के माध्यम से, हम उसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, उसकी वजह से आप चाहे इसको कितना भी जस्टिफाई करने का कोशिश करिए कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बट इट इज ऑल्सो ट्रू कि वी स्टिल नॉट एबल टू प्रूव आवर इम्पोर्टेंसी, आवर एग्जिस्टेंस, आवर इम्पोर्ट, आवर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डेमोक्रेसी में जब हम आते हैं, मीडिया की जिम्मेदारी है उन चीजों को प्रमोट करना, उन चीजों, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। केवल अकाउंटेबिलिटी की बात जवाबदेही, पहली बार मुझे प्रवास, स्वर्गीय प्रवास जोशी साहब से मिलने का सौभाग्य मिला। जोशी साहब ने मुझसे पूछा कि आप क्यों इस फील्ड में आए हैं। मैंने कहा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ड्यूटीज को निर्वाह करना चाहता हूँ। बोला आपको मालूम है अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपको मालूम है आप कितने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा सर आज तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से एक दिन मैं इसको प्रूव करूंगा कि हम जिस देश के लिए, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहां हमारी ड्यूटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के प्रति क्या है। मैं आज इसको फक्र के साथ कहता हूं कि सोशल मीडिया में इतना इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी मैं सोशल मीडिया पे इतना मैं लिखता हूं, इतने समय 15-20 साल से या क्यों कि 28 साल से मैं आईटी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, कभी किसी तरह की नेगेटिव एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व नहीं हुए, कभी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से या किसी ट्यूटर्स के माध्यम से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में हमने जाने नहीं दिया। ये हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हर व्यक्ति को इन चीजों का इस्तेमाल करने से पहले वो सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो सेंसर अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास वो सेंसर नहीं है तो प्लीज, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि हमको इस ऐसे प्रोफेशन के साथ जुड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है। डेमोक्रेसी में मीडिया की जिम्मेदारी, ये बात सच है कि हम परिवार वाले हैं, हमको भी अर्न चाहिए, हमको भी लाइवलीहुड चाहिए, हमको भी परिवार पालने के लिए रोजी रोटी चाहिए, लेकिन इस प्रोफेशन को इस रोजी रोटी के नाम पर आप डिक्लाइन नहीं कर सकते। आपको मॉरल वैल्यूज को मेंटेन करना पड़ेगा। मैं भ्राता निकुंज भाई के प्रति बड़ा आभारी हूँ, लगातार आपके कॉलम जो आप लिखते हैं अलग अलग प्रिंट मीडिया के माध्यम से मुझे मिलते हैं, मैं निकुंज भाई का बड़ा दिल से आभारी हूँ कि आप मुझे लगातार जितने भी कॉलम आपने हिंदी इंग्लिश या अदर लैंग्वेज में भी कई बार मुझे आपके कॉलम्स मिलते हैं तो उनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये कहीं कहीं हमारे लिए वो मोटिवेशन का काम करते हैं और हमको सही चीजें, अच्छी चीजें करने के लिए इंस्पायर करती है कि जब एक व्यक्ति इतना अच्छा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये हमको प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ये जज्बा दिया, ये हौसला दिया, ये ताकत दी, ये हिम्मत दी कि अगर हम चाहे हमारे इरादे अच्छे हैं, प्रोफेशन चाहे कोई सा भी हो, दीक्षित साहब ने कहा कि चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे आप टीचर्स हो, सबकी हमारी जिम्मेदारी है अगर आप अपने प्रोफेशन को ईमानदारी से निभा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता किसी भी प्रोफेशन में कोई दिक्कत आएगी। हाँ, ये बात जरूरी है कि जिंदा रहने का ये जज्बा फिर असर लाएगा, जिंदा रहने का ये जज्बा फिर असर लाएगा। मुश्किल है मगर वक्त तो है, ये भी गुजर जाएगा। तो इन शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति अगेन आप बहुत आभार, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमको लगातार यहाँ बुलाते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, इतना रेस्पेक्ट देते हैं। और मुझे इस बात का फक्र है कि मैं इस प्रोग्राम में आने के लिए अब तक का मेरा जोश, मेरा जज्बा, मेरा पैशन कम नहीं हुआ। मैं उसी जज्बे के साथ में इस प्रोग्राम में आता हूँ और 2 महीने पहले से मेरी तैयारियां इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए शुरू हो जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरा जैसा व्यक्ति जहाँ कहीं टिकता नहीं है, चीजों में आस्था नहीं है, एक न्यूट्रल टाइप का व्यक्ति मैं हूँ, लेकिन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से मैं आता हूँ और केवल आता नहीं हूँ, मैं अलग अलग हमारे मित्रों को, हमारे मीडिया साथियों को और अलग अलग उन नए व्यक्तियों को लाने की कोशिश करता हूँ कि आप आइए और अपने अंदर जो नेगेटिविटी आपके अंदर है, जो आपके अंदर का इनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको खत्म करने का जरिया है तो आध्यात्मिकता है और आध्यात्मिकता केवल आपको प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलेगी। मैं पुनः आप सबके प्रति, विशेषकर हमारे पत्रकार साथियों के प्रति, हमारे प्रोफेसर साहब के प्रति, हमारे टीचर्स के प्रति बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे जैसे व्यक्ति को यह मंच मिला, हमारे जैसे व्यक्ति को यहाँ आने का मौका मिला, हमने हमारे कर्तव्यों के माध्यम से, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से एक ईमानदार एफर्ट्स करने का प्रयास किया और उसको आप तक पूरी ईमानदारी से करते आ रहे हैं। आगे भी इसी जज्बे के साथ, इसी हौसले के साथ, इसी विश्वास के साथ हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करेंगे। ओम शांति, नमस्कार, थैंक यू।
थैंक यू भाई कमलेश मीणा, आपने अपने जीवन के अनुभव से ये बता दिया है कि हमारा प्रोफेशन चाहे कोई भी हो लेकिन जीवन में सकारात्मकता का महत्व सर्वोपरि है। अब इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हम हमारे आदरणीय ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आप अपने 13 साल की उम्र में ही ब्रह्मा कुमारी के कॉन्टेक्ट में आए थे, अभी आप 33 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित रूप से मुंबई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत का पहला आध्यात्मिक चैनल, संस्कार चैनल को निर्माण करने में आपका सबसे बड़ा और मुख्य रूप से योगदान रहा है। ब्रह्मा कुमारी की पहली इंटरनेट वेबसाइट आपके द्वारा 1998 में बनाई गई, आपके द्वारा सेवा ब्लॉग भी बनाया गया जिसकी मदद से ब्रह्मा कुमारी की पल पल की न्यूज मिलने लगी है और आप साथ साथ एक विश्व प्रसिद्ध एक्टर भी हैं और वर्तमान समय आप नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग के हैं। ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी,
ओम शांति। हमारे मीना जी ने जो धुआंधार भाषण किया उसके बाद मैं यही सोच रहा, हमको तो कुछ दिन कपाल भाती करेंगे तभी तक इतनी एनर्जी आएगी इतना एक सांस में बोलने की। हमारे प्रोफेसर वडनरे जी ने भी मुझे बेस्ट ऑफ लक बोला, अच्छा बैटिंग करके आना। ये दिलीप बाबू इनके जैसा आवाज भी नहीं है, बट बरसों से हमारे शांतनु भाई की मेहरबानी है, मतलब इसकी हाइट वगैरह अच्छी है, खड़ा कर देते 5 मिनट तो बोल ही लेगा। तो कुछ घंटों से हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में। वस्तुतः हमारी जब मीटिंग होती है तो ये विषय मैं ही खास रखवाता हूँ। पिछले वर्ष से जब पुनः शुरुआत हुई मीडिया कॉन्फ्रेंस की कोरोना काल के बाद, तो तभी जब मुझसे पूछा गया आप कोई विषय बताइए, तब मैंने कहा ये विषय रखना जरूरी है, क्योंकि संसार में हम कहते हैं भाव और भावना, ये दो शब्दों के आधार पर समस्त जो भी रिश्ते हैं या सांसारिक व्यवस्था है वह टिकी हुई है। और इसीलिए हम लोगों ने ये बार बार ये एक शब्द सुना है, मैन इज ए सोशल एनिमल। परंतु समय बीतता गया, जैसे कई हमारे मान्यवरों ने अपने वक्तव्य में बताया कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, और आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि मैन इज ए वर्चुअली सोशल एनिमल। हम लोग सोशल थे, आज भी सोशल है, परंतु हम लोग ज्यादा अभी वर्चुअली सोशल हो गए। घर परिवार में रहते हुए भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, हर एक जन अपने अपने फोन से ही एक दूसरे से कांटेक्ट करना पसंद करता है। पहले के दौर में ये हुआ करता था, जन्मदिन है तो दादा दादी के पास जाएंगे, पांव छुएंगे, वो 11 रुपए का कवर मिलेगा, ये सब चलता था। अभी तो सब व्हाट्सएप में ही हो जाता है, किसी का जन्म हुआ व्हाट्सएप में कॉन्ग्रेचुलेशन, किसी का मृत्यु भी शोक संदेश व्हाट्सएप में, सब कुछ अभी वर्चुअल होता जा रहा है। कुछ लोगों के लिए अच्छा है, हमारे कई युवा मित्र कहते हैं सो व्हाट, व्हाई सो मच यू एंड क्राई, इतना क्यों आप बवाल मचा रहे। टू ईच देयर ओन, जिसको जो ठीक लगता है अपनी जीवन अपने हिसाब से जी सकता है, परंतु जो यहां बैठे हैं और विशेष करके जो हमारे युवा मित्र मुझे देख रहे सुन रहे लाइव के माध्यम से, मैं उनको इतना ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आपका कभी दिल टूट जाएगा या टूटता होगा, संजोग से दिल किसी का वर्चुअल नहीं हुआ है, वो असली है, धड़कता है, धड़क रहा है ना भाई सबका दिल, बोलो दिल धड़क रहा है कि वो भी वर्चुअल है, व्हाट्सएप वाला दिल नहीं है ना, असली है। तो जब कभी आपका दिल को ठेस पहुंचेगी या जब कभी आप किसी बात से उदास निराश होंगे, रोने का मन करेगा, तो तब आपको किसी कंधे की आवश्यकता पड़ेगी, तब आपको लगेगा कि कोई आए जो मेरे कंधे पे हाथ रखे, मेरे सिर पे हाथ रखे, कोई मेरे आंसू पोंछे। तो ये चीज जो है ये सोशल मीडिया में नहीं हो सकती, इसके लिए व्यक्ति टू व्यक्ति कांटेक्ट चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट चाहिए। तो इसीलिए शुरुआत में जो कहा भाव और भावना, तो जो सोशल मीडिया या अन्य जितने भी प्रकार के तकनीकी एडवांसमेंट हुआ है अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, खराब कुछ नहीं है, परंतु उसको अपने बैलेंस के साथ यूज करने की अकल भी चाहिए। तो जानवर और मनुष्य में इतना एक फर्क भगवान ने डाला कि मनुष्य को विवेकी बनाया, विवेकी जीव, अन्यथा जानवर और मनुष्य में ज्यादा फर्क नहीं है, पर विवेक, विनय और विवेक दिया है, तो जिस वजह से ये समझ में आता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो बेचारे जानवर समझ नहीं पाते हैं, जानवर को ये नहीं समझ में आता मेरे को किसी ने हर्ट किया, मनुष्य को समझ में आता है देखो मेरी भावना इन्होंने दुभा दी, मेरा दिल दुखा दिया। तो जो आपको समझ मिली है उस समझ का उपयोग करके इस तकनीक को आप कैसे यूज करो ये आप पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ प्रतिवर्ष सभी को बुलाते, ये सत्र भी रखते हैं, ये हम कोई प्रवचन या प्रीचिंग के लिए नहीं रखते, तुम ये इतना यूज करो इतना यूज करो, इतना घंटा मत यूज करो इतना घंटा यूज करो, नहीं। आज ये वस्तु स्थिति है समाज में, ये हकीकत है। मुझको ये बताइए यहाँ बैठे हुए जितने भी है, कितने लोगों के बच्चों को चश्मा लग गया, हाथ खड़ा करो। बच्चों को चश्मा लग गया, हाथ खड़ा करो। आज अधिकांश हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, हमको तो नहीं लगा आज तक चश्मा, पर छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया। तो कहते हैं भाई स्क्रीन टाइम, ये टाइम, वो टाइम, तो ऐसा है सब अच्छा है, बट विथ कॉशन। आप क्या चीज कितनी यूज करते हो ये आपकी बुद्धि और आपके विवेक के ऊपर है। देखिए चीनी सबको पसंद है, मीठा पसंद है ना सबको, पसंद है मीठा? कड़वा करेला पसंद है कि मीठा पसंद है? बोलो, मीठा पसंद है ना, अच्छा लगता है, क्यों खाते हो तो अच्छा लगता है, परंतु ज्यादा खाएंगे तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी। तो डॉक्टर भी कहते हैं भले सब खाओ, मिठाई खाओ पर थोड़ा खाओ, बाकी भी सब चीजें खाओ। ये भी कुछ इसी प्रकार का है, आप जो भी यूज करना चाहते अवश्य कीजिए, फेसबुक कीजिए, इंस्टाग्राम कीजिए, परंतु उसके अंदर अपने लिए वैलिडेशन नहीं ढूंढिए कि कोई मेरे को अच्छा अच्छा कहे, मेरे को ये ऐसा ऐसा करे। इसका दो अर्थ होता है, समझ में आता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको शुद्ध हिंदी में ठेंगा। तो ये चक्कर से दूर रहो, आपको जिससे जो शेयर करना है करिए, परंतु ऐसी कोई भी चीज जो आपकी सुख और शांति को भंग करती है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। फिर वो कौन सी भी चीज हो, सोशल मीडिया होने दो, प्रिंट मीडिया होने दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होने दो, आपके लिए क्या अच्छा है ये आपको तय करना है। ये मुझे या यहां बैठे हुए जो है उनको तय नहीं करना है, आपको तय करना है। अगर आपको लगता है मैं तो 10 घंटा सोशल मीडिया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छी बात है, भले करो, तो अपने लिए क्या अच्छा है ये आपको तय करना है। तो इसीलिए जो विषय इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, हर चीज का इंपैक्ट अच्छा भी है तो कहां का बुरा भी है, ये मुझे तय करना मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, बी योर ओन जज। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को सेफ रहिए, सिक्योर रहिए, सब कुछ करिए, परंतु कहीं फंसिए नहीं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निकुंज भाई जी, आपका बहुत ही सरल और सुंदर शब्दों में आपने बताया कि हमारे लाइफ में कौन सी चीजों की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए जो हमारे सुख शांति को और बढ़ाए, और ऐसी चीजों को हमें बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए जो हमारे जीवन में सुख शांति को घटाए। अगले गेस्ट ऑफ ऑनर को मैं बुलाना चाहूंगी, डॉक्टर आवास शुक्ला। आपको, आप तोलानी एफजी पॉलिटेक्निक के सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, उसके बाद आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं, आपने होम साइंस में एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में अपनी पीएचडी पूरी की है, आप अभी इथिक्स एंड जर्नलिज्म के ऊपर बुक लिख रही है, उसके ऊपर आप स्पेशल स्टडी कर रही है, डॉक्टर आवास शुक्ला जी अहमदाबाद से।
ओम शांति। मंचासीन वंदनीय विद्वतगण एवं मंचा विमुख मेरे सभी भाई बहन को मेरा नमस्कार। आदर्श विचार, आदर्श परिवार, संस्कारिक समाज जीवन के लिए ब्रह्म कुमारी जो कार्य कर रहा है, सबसे पहले तो मैं उसे वंदन करती हूँ। कौशिक जी और निकुंज जी, आज मेरी दो परीक्षाएं हैं। सबसे पहला ही परीक्षा तो ये है कि सबसे आखिरी में बोलना है, और दूसरी परीक्षा ये है कि समाज का जो बौद्धिक वर्ग है वो वर्ग आज एक साथ यहाँ पे ओम शांति स्वाहाय के यज्ञ में अपना जीवन समर्पित कर चुका है। उन सबके सामने मैं प्रथम बार मेरी बात रखने जा रही हूँ। इस प्रांगण में पांव रखते ही एक जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस की फील आई है, वो फील को मैं वंदन करती हूँ। विषय पे आती हूँ। आज का विषय है समाज और सोशल मीडिया का समाज पे इम्पैक्ट। भारतीय समाज की बात करें, हम भारत की भूमि में है तो भारत की बात करें, भारतीय समाज कैसा है तो संस्कार, शिक्षा और संस्कृति का समन्वय से भरपूर है, ऐसा हमारा भारत देश है। उसके साथ अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया ने हमको, हमारे कम्युनिकेशन को, इंफॉर्मेशन शेयरिंग को और मीडिया को कैसे कंज्यूम करना, उसके तौर तरीके सिखाने का नया एक जरिया बन गया है। इट इज डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट हैज इंक्रीज अवर कनेक्टिविटी। जो आगे सब बात कर चुके हैं वो बात मैं रिपीट नहीं करूंगी। ज्यादातर स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन होता है एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ फेक स्पीच, फेक न्यूज, फेक बातों का प्रचार प्रसार ज्यादा होता है। इससे हमारी युवा पीढ़ी पे क्या असर होता है, हम सब पे क्या असर होता है, क्योंकि समाज हम ही से है, हमारी रिलेशनशिप्स पे, हमारी सेल्फ एस्टीम पे, मेंटल हेल्थ पे, टाइम मैनेजमेंट पे फर्क पड़ता है इसका। सोशल मीडिया पब्लिक ओपिनियन भी बनाता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को और हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को ग्रो भी करता है। ये बात हुई एक समाज की और एक सोशल मीडिया के इम्पैक्ट की। अब अगर हम भारतीय जीवन परंपरा पे या प्रणाली पे आए हैं तो भारतीय जीवन कैसा है? हम परिवार से जुड़े हैं, हम परिवार के साथ रहते हैं, पर आज हम जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली तक तो आ गए, अब न्यूक्लियर फैमिली से इंडिविजुअल फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बढ़ने की वजह कहीं ना कहीं हमारे हाथ में रहता हमारा 24 घंटे का साथी है। हम परिवार में साथ बैठना नहीं भूले हैं, हम आज भी परिवार के साथ बैठते जरूर हैं, लेकिन चार लोग बैठे हैं, चार लोग अपने अपने फोन में लगे हैं, चार लोग अपने अपने फोन में ही देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम साथ बैठे हैं लेकिन हम बाहर होते हैं, हम पास है फिर भी हम दूर हैं। हम फिजिकली तो आपके साथ है लेकिन मैं मेंटली अभी अमेरिका बैठी थी, जब तक स्टेज पे सब बोल रहे थे मेरा ध्यान ही नहीं था क्योंकि फोन में किसी का मैसेज तो नहीं छूट गया, हम वही देखते हैं। इससे क्या होता है, हमारे भारत देश की एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा वाक्य जो हम हर बार सुनते हैं, हर बार बोलते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। क्या वाकई में आज का बच्चा राम है? आज एक साल का बच्चा अपने भाई बहन को देख के जितना खुश नहीं होता, वो अपने मोबाइल को देख के उतना खुश हो जाता है साहब, उसको कहीं ना कहीं मोबाइल चाहिए। मेरे घर पे काम करने आती एक बेटी है, हमारे देश की ही बेटी है, वो मजदूरी कर पाती है, क्यों कर पाती है? क्योंकि उसके बच्चे के हाथ में उसने फोन दे दिया है। वो फोन में वो क्या देखती है? वो रील्स देखती है, वो यूट्यूब देखती है, वो कहीं ना कहीं फेसबुक देखती है, इंस्टाग्राम देखती है। वो 3-4 साल के बच्चे को सारे सोशल मीडिया कनेक्ट पता है। हम स्कूल की बात करें, स्कूल के एजुकेशन में क्या होना चाहिए? स्कूल के एजुकेशन में संस्कार और शिक्षा होना चाहिए। आज का स्कूल एजुकेशन क्या कहता है? मोबाइल विथ एजुकेशन, हम मोबाइल के साथ एजुकेशन देते हैं। तो क्या शिक्षक का प्यार, शिक्षक के मूल्य, शिक्षक के संस्कार हमारा मोबाइल दे पाएगा? हमारी आज की पीढ़ी को नहीं दे पाएगा। इस निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण ना भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, इस बात के साथ हम वापस हमारे सोशल मीडिया पे आए तो सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली पीढ़ी को हमें सिखाना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए। टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम G20 के तौर में है, दो दिन G20 का सेलिब्रेशन भी हमारे देश में चल रहा है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की हम बात करते हैं। भारतवर्ष विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, तब हमें ही ये तय करना है, क्योंकि समाज हम ही है, हम आप मिलकर समाज है। तो क्या हमें हमारी पीढ़ी को चंद्रयान, आदित्य L1, गगनयान के बारे में बताना है, या उन्हें हमें सिर्फ पर्सनल गॉसिपिंग के बारे में, आज मैं यहाँ गई थी तो मैं कैसी लग रही हूँ, कौन सा ड्रेस पहना, हम ड्रेसेस एंड फेसेस के तौर में आ गए। तो क्या ये ड्रेसेस और फेसेस ही हमारी युवा पीढ़ी को देना है कि उससे भी आगे बढ़ना है? उससे आगे बढ़ने की प्रेरणा जो हम करेंगे उसका अनुकरण हमारे आने वाली पीढ़ी करेगी। जो माता पिता घर में करेंगे वो बच्चे करेंगे, जो बच्चे करेंगे वो समाज करेगा। आज सबसे बड़े दुख की बातें होती है कि हम सोशल मीडिया की पॉजिटिव बातें मानती हूँ, बहुत है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है, पर हम यहाँ से कोसों मीलों दूर बैठे इंसान को, जिसको हम जानते भी नहीं, सोशल मीडिया कनेक्ट से जानते, उसको ज्ञान बांटने चले हैं, पर हमारे पड़ोस में कोई दुखी है कि सुखी है उसकी चिंता हम नहीं कर पाते। हमारे घर पे जो काम करने वाले लोग हैं, हमारा परिवार जो है, हम उसके बारे में चिंता नहीं करते, कहीं ना कहीं हम चूक करते हैं। सोशल मीडिया के उपयोग में आज जो अभी जैसे मैंने बताया आपको कि रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब का जमाना है, जिसमें युवा पीढ़ी को सेलिब्रिटी बनने का एक अवसर मिल गया है। सबको लगता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं कुछ बोलूंगी, मैं कुछ करके बताती हूँ, पीछे बैकग्राउंड भी चेंज हो जाता है। आजकल तो हम हीरो हीरोइन लग ही जाते हैं कहीं ना कहीं, कुछ फोटोशॉप और एडिटिंग की मदद से। पर वो कुछ लोग जो पैसा कमाते हैं उस चक्कर में, साहब हम मैक्सिमम लोगों को समय बिगाड़ने का जरिया सिखा रहे हैं। क्या ये हमारे देश की प्रगति के लिए हम इस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ सांस्कृतिक एडवांसमेंट भी आवश्यक है। मेरा हम आप सबसे, यहाँ बैठे सबसे एक ही अनुरोध है कि क्यों ना हम देशभक्ति का, विकास का, समाज का, अर्थतंत्र का, इतिहास का, हमारी भाषाओं का, हमारे गौरव का संदेश देकर भारतीय समाज पूरे विश्व में देश के लिए एक उदाहरण स्वरूप बने, ऐसा सोशल मीडिया का उपयोग करके बताएं। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, वो शुरुआत शायद हम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी भूमि पे बैठे हैं जहाँ पे परिवार, समाज, समानता और एकता की बात होती है। हमारे गुजराती में दो लाइन है जिससे मैं मेरी बात का अंत करूंगी, जिसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। कोई बने पवन का पंथक, कोई शिखर सजाए, कोई बने भवन की नींव, कोई ध्वज लहराए। ब्रह्म कुमारी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे ध्वज भी है, शिखर भी है, नींव भी है और पंथ भी है। तो जो विषय लेके हम यहाँ पे तीन दिन की जो चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पे मीडिया का उपयोग और सोशल मीडिया का उपयोग की बात हुई है, तो इस उपयोग को सामाजिक उत्थान के लिए, वैश्विक उत्थान के लिए, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ इस चीज को पूरा करने में प्रयत्नशील रहे। वंदे भारत मातरम। नमस्ते।
थैंक यू बहन आवाज शुक्ला जी आपको। अब हमारे चेयरपर्सन को आमंत्रित करने से पहले हमारे बीच आज एक पुस्तक विमोचन होने वाला है। हमारे लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि महाराष्ट्र में नागपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका पावर ऑफ वन हमारे ब्रह्मा कुमारीज परिवार के लिए हमेशा से जुड़े हैं। सितंबर माह के पावर ऑफ वन के अंक में हमारे द्वारा नागपुर में आयोजित सेलिब्रेटिंग लाइफ कार्यक्रम का शानदार कवरेज करने के लिए हम पत्रिका के प्रकाशक श्री अजय बागड़ी जी, प्रधान संपादक शिल्पी सिंह जी और संपादक नीरज श्रीवास्तव जी आपके आभारी हैं। इस पत्रिका के द्वारा भविष्य में हमारे ब्रह्मा कुमारीज परिवार की गतिविधियों का सकारात्मक प्रकाशन होगा, ऐसी आशा करते हैं। यहाँ हम सितंबर अंक का विमोचन अभी प्रकाशित करने जा रहे हैं। Thank you. आज के विषय पर पुनः वापस लौटते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी. आप प्रोफेसर एंड डीन स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन GECRC यूनिवर्सिटी जयपुर में हैं. अभी आप वहां के डीन हैं. आप अपने 15 सालों के कार्यकाल में ही जर्नलिज्म से एडिटर बन गए. आपने हर तरीके के जर्नल्स में काम किया है जिनमें डेलीज, वीकर्स, मंथली भी टेलीकास्ट होते हैं. आप अपने जर्नलिस्ट के कार्यकाल में पार्लियामेंट अटैक, मैच फिक्सिंग केसेस, अंडरवर्ल्ड ऐसी बहुत सी न्यूज को एक्सपोज किया हुआ है. आपकी 2020 और 2021 में महात्मा गांधी सिनेमा पुस्तक लंदन में भी पब्लिश हुई है. प्रातः डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी.
धन्यवाद योगिनी बहन. कुछ ज्यादा ही पढ़ा आपने. इतना ज्यादा मैं हूं नहीं. मैं तो बल्कि पहले से भी छोटा होता जा रहा हूं. मैं अभी अपना रिकॉर्ड देख रहा था. पुराना गवर्नमेंट जॉब भी मैंने की थी कुछ साल और उसमें मैं 5'7" का आया था. लेकिन अब जब भी अपना वो करता हूं, मैं हाइट मापता हूं, तो हमेशा 5'7" आता है. मुझे पता नहीं वो 1 कहां चलेगी. तो एनीवे जोक्स अपार्ट, नमस्कार एवरीबॉडी एंड डिग्निटरीज ऑन द डायस, डिग्निटरीज ऑफ द डायस, भाइयों और बहनों. सिर्फ एक को छोड़ के, क्योंकि इसमें मेरी बेटर हाफ भी है. तो हाँ, तो टॉपिक बहुत अच्छा था और मेरे साथियों ने इतना बढ़िया बोला है उस पर. मेरे लिए इनफेक्ट बहुत कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं सेशन को चेयर कर रहा था तो ऑब्वियसली आई एम सपोज टू सम इट अप. तो और कुछ सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा. और तो लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ देम. किसने क्या कहा और किसने क्या खास कहा. जैसे हमारे डॉक्टर सोमनाथ जी हैं. डॉक्टर सोमनाथ जी ने कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात की और कहते हैं 72 घंटा ऑनलाइन रहते हैं आदमी आजकल, और वर्चुअल फ्रेंड्स हैं उन पे ज्यादा रिलाय करते हैं रियल फ्रेंड्स के बजाय. ये सब उन्होंने बोला है. मूक नायक की बात की उन्होंने. बाबा साहब अम्बेडकर का न्यूज़पेपर था. बाबा साहब अम्बेडकर ने इनफेक्ट 4 न्यूज़पेपर निकाले थे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता हूँ मैं. और ये मूक नायक जिसमें से एक बड़ा न्यूज़पेपर था. और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, सना के बारे में बात की, और उनका कहना था सॉल्यूशन जर्नलिज्म चाहिए, जो मुझे भी लगता है कि सॉल्यूशन जर्नलिज्म तो चाहिए. नथमल जी ने ये कहा कि सोशल मीडिया ने हमारे माइंड्स को कैप्चर कर लिया है. पीपल्स माइंड्स लाइक सोशल मीडिया हैज कैप्चर्ड, सो that we have no control on social media. Let me tell you, I definitely agree with him. And he was wondering like what kind of society are we creating. Hum log aisi society chahte hain jisme shanti ho, peace ho, ya fir aisi society chahte hain jisme chaos ho, khub sara jhagda ho, kalah ho, ye sari cheeze ho. बाप जी ने वही बोला जो मैं बोलना चाह रहा था. सारा सब कुछ उन्होंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात की और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात की. कम्युनिकेशन किस तरह से, कम्युनिकेशन को, कनेक्टिविटी को प्रमोट किया है सोशल मीडिया ने. उन्होंने ये बहुत सारे फिगर्स उन्होंने दिए, इसका मतलब बहुत सारा काम किया है आपने इस पे. और पॉलिटिक्स के बारे में बात की, पॉलिटिक्स किस तरह से सोशल मीडिया का यूज करती है, पॉलिटी किस तरह से यूज करती है, पब्लिक ओपिनियन किस तरह से बिल्ड किया जाता है, बिजनेस इकोनॉमी किस तरह से काम करते हैं इस पे सोशल मीडिया पे, ये सारा उन्होंने कहा. बट एट द एंड ऑफ द डे ही ऑल्सो सेड इट हैम्पर्स इमोशनल बॉन्ड्स, जो कि मैं पक्का उनसे एग्री करता हूं. और इनफैक्ट कुछ ऐसा है ही नहीं जिसमें ना एग्री करूं. और एडिक्शन के बारे में उन्होंने बात की, और इसके बाद में दिलीप जी तो मास्टर हैं, कभी कहते हैं मैं 10 मिनट बोलने वाला हूँ, 5:10 हुए हैं, फिर 5:17 हुए हैं, और फिर समय समाप्त हुआ। रेडियो के हैं तो आवाज की महत्ता जानते हैं, और इनफेक्ट क्योंकि आवाज जो है, इनफेक्ट दिलीप जी भी एग्री करेंगे, निकुंज जी भी एग्री करेंगे, क्योंकि दोनों एक्टर्स भी हैं, आवाज आपको सुपरस्टार भी बनाती है। अगर आप अमिताभ बच्चन को देखेंगे तो हाय जितने बार बोलता है वो उतने बार ही उसकी फिल्में सुपरहिट होती हैं। तो उन्होंने जो है थिंक का एब्रीवेशन बहुत अच्छा यूज किया, और डिसएडवांटेजेस का बात किया, और ये सब उन्होंने बोला। उसके अलावा हमारे डॉक्टर शिव स्वरूप ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया उस लेडी का जिनकी तस्वीर लगी हुई है वहां की मोनार्की के ऑफिस में, मोनार्की का जो वो है वहां पे लगी हुई है, और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया उन्होंने। ये एक्चुअल में ये ऐसा एग्जाम्पल है जो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और मेरी वाइफ कह रही है कि आप फेस थोड़ा दूसरी तरफ ले जा रहे हैं इसलिए आवाज नहीं आ रही है। तो एनीवे थैंक यू वेरी मच। और उन्होंने ये भी बोला कि ये बून है या बेन है, जो मुझे भी इस पे सवाल उठाने हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा बहुत जल्दी। आरती जी ने बोला, उन्होंने प्रेस काउंसिल के बारे में ज्यादा बात की, और थैंक यू वेरी मच, वैसे मेरी आवाज पहुंच जाती है। तो उन्होंने प्रेस काउंसिल की बात की, क्योंकि प्रेस काउंसिल जो है हैरिस जर्नलिस्ट के लिए भी काम कर रहे हैं, और हमारे कमलेश जी ने तो बहुत कुछ बोला रोटी कपड़ा और मकान के साथ में सोशल मीडिया। सच है, सब लोग सोशल मीडिया चाहिए आजकल। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, 2-2 साल के बच्चे, 1.5-1.5 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे, अभी एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको। और वो ये भी कह रहे थे दैट वी हैव टू मेंटेन मॉरलिटी। सच में ये सोशल मीडिया जो है मॉरलिटी पे भी बहुत बड़ा प्रहार करती है। आप देख लीजिए किस तरह के फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं उस पे, किस तरह के लोग, पता नहीं आपके आपके नंबर कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। मेरा नंबर पता नहीं, क्योंकि जर्नलिस्ट रहा हूँ इतने साल तक, 20-25 साल तक, तो बहुत सारे लोगों के पास में नंबर है, इसलिए वो पन्नू भी फोन करता है कि, और वो रोज रिकॉर्डेड मैसेज मुझे सुनाता था पहले, आजकल तो बंद कर दिया क्योंकि मैंने ब्लॉक कर दिए वो 200-400 नंबर। तो वो हमेशा मैसेज सुनाता था खालिस्तान लेके रहेंगे, मैं, मेरे पास खालिस्तान पड़ा है क्या, मेरे को क्यों फोन करता है। एनीवे बट लोगों को लगता है कि पब्लिक ओपिनियन को हम मोल्ड कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। निकुंज भाई ने बहुत बढ़िया बोला, बहुत कम शब्दों में बोला लेकिन बहुत अच्छा बोला, भाव भावना दोनों चीजें, और किस तरह से भाव भावना जो है इस पे नहीं आ सकते, सोशल मीडिया पे नहीं आ सकते, और किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ रहे हैं। आवा जी ने, पहले से जानता हूँ आवा जी को, और आवा जी ने बहुत बढ़िया बोला, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रहा है, और न्यूक्लियर टू इंडिविजुअल फैमिली आ रहा है, जो कि सच है, और हम लोग कभी कभी पास भी होते हैं और दूर भी होते हैं, पर मैं ये गाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सच हो रहा है, और संस्कार जो है नहीं मिल रहे हैं। एनीवे लेट्स गो बैक टू सॉल्यूशंस नाउ। जो मैंने 2-4 सॉल्यूशन इसमें वर्कआउट किए हैं, अब पता नहीं मुझसे एग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो डिसएडवांटेज इसका है, सोशल मीडिया का है, वो डिसएडवांटेज है ये बहुत फ्लीटिंग है, जो शायद एक आध ने मेरे दोस्त ने बोला भी था, बहुत फ्लीटिंग है, बहुत एफेमरल है, बहुत इम्परमानेंट है, बहुत टेम्परेरी है। मतलब अभी कुछ आपने देखा, 2 सेकंड बाद में आपने आप निकल गए, आप उसको ढूंढ ही नहीं सकते, ये कहाँ गया, तो वो मिलता नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका जो है, अगर आप किताबों से इसको कंपेयर करोगे, तो जो रामचरितमानस है या फिर भगवत गीता है या फिर जो भी किताबें हैं, अब किताबों के सामने तो ये नहीं ठहरेगा ना, आगे भी नहीं ठहरेगा, ये मेरे से लिखवा के ले लीजिए, मैं लिख सकता हूँ, नहीं ठहरेगा। और इसलिए इस चीज को आप ध्यान में रखिए, ये टेम्परेरी चीज है और टेम्परेरी के पीछे आदमी को मुझे तो लगता नहीं कि पागल होना चाहिए। इतनी बढ़िया जगह पे बैठे हैं और उसके बावजूद भी अगर आप एडिक्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब कम ही है। दूसरा चीज जो मैं आपको कहता हूं, जो ये बहुत बड़ी चीज है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आप हमेशा किसी भी चीज को जो है ना, ये कहा जाता है, सब जगह कहा जाता है, यहाँ ब्रह्म कुमारीज में भी कहा जाता है और ये जितने भी हैं आपके सामने, चाहे राम जी हो, चाहे बुद्ध हो, या फिर क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, या पशुपतिनाथ हो, या शिव बाबा हो, सबका एक ही कहना है, मास्टर बनिए, मास्टर बनिए। आई एम सेइंग प्लीज डोंट लेट इट मास्टर यू, डोंट लेट द सोशल मीडिया मास्टर यू। अगर आप मास्टर इसको बनने देंगे ना तो दिक्कत होगी सर, दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इसके मास्टर बनेंगे, इसके मास्टर ही बनिए सर, ये बहुत छोटी चीज है, इसके मास्टर बनिए आप। मैं सीधा इसको 9:30 बंद कर देता हूँ और मेरे स्टूडेंट भी बोलते हैं सर, सर आप कॉल मेरी उठाएंगे? मैंने कहा उठाऊंगा नहीं बेटा, बट कॉल बैक करूंगा। हो सकता मॉर्निंग में कॉल बैक कर लूं, हो सकता ना कर पाऊं, झूठ मत बोलो आप। तो मैं कहता हूं मास्टर करिए इसको, इसको अपने सर पे मत बिठाइए, इसको जो है अपना नौकर बनाइए। डोंट लेट इट इनस्लेव यू, मेक इट ए स्लेव ऑफ योर्स, बी ए मास्टर। दूसरा फैमिली टाइम, जो हमारी आवाज ये कह रही थी, बिल्कुल सही बात है, फैमिली टाइम में इसको मत घुसने दीजिए, क्योंकि हमारा ज्वाइंट फैमिली होता था, ज्वाइंट से फिर न्यूक्लियर बना, न्यूक्लियर से फिर इंडिविजुअल फैमिली हो गया, ये होता है, सब जगह होता है। अब अमेरिका तो हमारे से बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है ना, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, 1780, हम तो 1947 में बने हैं। बट लेट मी टेल यू, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको छोटा सा इसका, आरुषि तलवार का केस आपने सुना था? आरुषि तलवार का केस किसने, कितने लोगों ने सुना था? उसमें सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट मेरे लिए क्या था, मैं पत्रकार होता था उस समय, सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट ये था कि आरुषि नेक्स्ट रूम में सोती थी और इसके मम्मी पापा अपने मम्मी पापा से, और वो जो इनसे कन्वर्स करती थी या कॉन्वर्सेशन जो चलता था इनका, व्हाट्सएप पे चलता था सर, सोशल मीडिया पे कन्वर्सेशन चलता था, जो मेरे लिए उस समय शॉक था, ये हो क्या रहा है। इसको घर में मत घुसने दीजिए सर, अपने रिलेशंस के बीच में मत घुसने दीजिए, अपने फैमिली के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में मत घुसने दीजिए, क्योंकि जो जादू की जप्पी जो फिजिकली होती है ना, वो जादू की जप्पी वो नहीं होती है, क्या वो जो क्या बोलते हैं उसको, इमोजी में नहीं होती है, वो बात नहीं है, भाव भावना नहीं है। और एक चीज और, आप किंग का एग्जाम्पल दिया था हमारे दिलीप जी ने, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। जो भी कुछ आप पोस्ट करें, प्लीज थिंक बिफोर यू पोस्ट इट। मैं तो बल्कि कहता हूं एक बार उसमें रिवाइज भी कर लीजिए, कुछ भी आप पोस्ट करें, मैं हमेशा रिवाइज करता हूं, क्योंकि गंदे आते हैं, जर्नलिस्ट वाले आते हैं, कॉपी भेजूंगा परफेक्ट भेजूंगा, हेडलाइन भी मेरी होगी, ब्लॉग भी मेरा होगा, सब कुछ मेरा होगा, ग्रामर भी मेरी होगी, तो वो पुरानी आते हैं जो कि अच्छे आते हैं। तो हमेशा सोच लीजिए जो आप पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग रिएक्ट भी करते हैं, कुछ भी गलत जाता है आपकी इमेज खराब होती है। व्हाट्सएप करें तो भी ध्यान से एक बार देख लें, वो क्लिक दबाने से पहले, कौन से वाला गया वो वाला। तो हाँ, कमलेश मीणा जी ने कुछ बातें बोली जिससे मैं एग्री नहीं करता हूं, उन्होंने थोड़ा जर्नलिज्म की भी धुलाई की, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझसे कोई पूछता है ना जर्नलिज्म क्या है, मेरे स्टूडेंट भी पूछते हैं, मैं बोलता हूं, सीधा बोलता हूं, भाई वो गाना सुना है ना एक जब वी मेट में, कौन सा गाना, वो करीना कपूर वाला, ये इश्क है जन्नत दिखाए वो वाला, और उसमें मैं सीधा बोलता हूं बच्चे मुझे जन्नत दिखाई थी जर्नलिज्म ने, और वो जर्नलिज्म ने जन्नत क्यों दिखाई, क्योंकि उसने मुझे ट्रेवल कराया, उसने मुझे जो एक्सपोजर दिया। आज भी मेरे से कोई पूछता आप कहाँ के हो, मैंने कहा 10% महाराष्ट्र का, 20% झारखंड का, 20% वेस्ट बंगाल का, 10% केरला का, और वो इसीलिए हुआ, इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि जर्नलिज्म ने मुझे ये सब दिखाया। हाँ, और पॉजिटिव बहुत सारा हो रहा है, लेट मी टेल यू, मैं आपकी कुछ चीजों से एग्री नहीं करता हूं, निकुंज जी और दूसरे भाइयों को या दूसरी सब बहनों को भी कहता हूं, मैं इस चीज से एग्री नहीं कर रहा हूं कि ये कलयुग है या कलयुग में कुछ अच्छा नहीं होता है। लेट मी टेल यू, वी आर हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, वी आर हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, क्योंकि जिस तरह से जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है एजुकेशन का, सर जब हम पढ़ते थे, हम कॉलेज में जाते थे तो ये बोला जाता था पास कोर्स है लेना तो ले लो, ना तो जाओ, ना तो जाओ, और अभी जो है आपके पास में स्वयं है, आपके पास में कोर्सेरा है और एकेडमी, अन अकेडमी और पता नहीं कितने कितने सारे हैं जिनके कभी कभी मैं लेक्चर भी देता हूं, कितने सारे हैं, तो दिस इज रियल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पॉलिटी, कि आपको मन कर रहा है, आप खूब गालियां देते हैं देश को, ये कहते हैं कि डिक्टेटरशिप आ गई, ये हो गई, वो हो गया, और रात में क्या करते हैं, 5 गालियां लिखते हैं और फिर सो जाते हैं गोटर गोटर करके। कोई केस करता है क्या आप पे, करता है क्या, बहुत रेयरली कोई पगला होगा वही केस करेगा, नहीं तो कोई केस नहीं करता है। तो ये डेमोक्रेसी है सर, ये नियामत है, ये तभी रियलाइज करते हो आप जब चाइना जैसे कंट्री में जाते हो, इस तरह के कंट्री में जाते हो, तब आप रियलाइज करते हो कि आप, मैं स्वर्ग में हूं भाई, मैं स्वर्ग में हूं। ये आप इस चीज को ध्यान में रखिए। दूसरी सारी बड़ी सारी अच्छी चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया की वजह से, कनेक्टिविटी आपकी ऐसी है कि वो मेरा बेटा बोलता है डैड मेरे को कैनेडा भेजो ना, तो वो कनाडा, मेरा एक भतीजा गया हुआ है, तो कनाडा नहीं बोलते हम, पंजाबी लोग क्या बोलते हैं, कनाडा भेजना पापा, कनाडा भेज। तो वो मैं इमीडिएटली अपने भतीजे को लिखता हूं, भाई यार वो भाई भी आना चाह रहा है, तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। आई मीन कुड यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ कनेक्टिविटी से यू नो 15 इयर्स अगो और 20 इयर्स अगो, इट ऑब्वियसली इट वॉजंट देयर। 2000 में ही तो आया, 21st सेंचुरी में आया इंटरनेट, और सोशल मीडिया तो 2004 के बाद में आई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं। जेसिका लाल का मर्डर केस आपने सुना हो सर, वो सारा उसी पे हुआ था, सोशल मीडिया पे हुआ था, जो रीहेयर करना पड़ा कोर्ट को और कन्विक्ट करना पड़ा, प्रियदर्शनी मट्टू का केस हो चाहे जेसिका लाल का मर्डर केस हो, वो सारी चीजें सिर्फ इसी की वजह से हुई है, जिसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ इसी की वजह से, बट बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था इसका। अन्ना आंदोलन हो, लोकपाल आंदोलन, उसमें भी बहुत बड़ा था, अरब स्प्रिंग में भी बहुत बड़ा था, ब्लैक लाइव मैटर में भी बहुत बड़ा था, तो चीजें बहुत बेटर हो रही है। ये मेरे लिए घंटी बजा रहे हैं, ओके बस मैं खत्म कर रहा हूं। एक लास्ट चीज आपको बताता हूं, फिजिकल हेल्थ प्लीज सोचिए, फिजिकल हेल्थ अपने बच्चों का सोचिए, जो निकुंज जी ने बहुत बढ़िया बोला था, छोटे छोटे बच्चों को, 2-2 साल के बच्चों को चश्मा लग रहा है, वो ट्रेन में मैंने देखा था कहीं पे एक छोटा बच्चा रो रहा था, तो मैंने पूछा भाई क्यों रो रहा है, नहीं समझ में आया मुझे यूट्यूब क्या बोल रहा है, तो मैंने उसकी मम्मी से पूछा क्या चाहिए, बोले यूट्यूब चाहिए इसको, YouTube चाहिए। ये मत करिए सर, ये मत करिए, मत दीजिए उनको YouTube, मत दीजिए ये, क्योंकि एजुकेशन का मतलब, एक लास्ट चीज आपको बता देता हूं, एजुकेशन का मतलब सिर्फ लर्निंग्स नहीं है, सिर्फ नॉलेज नहीं है। एजुकेशन का मतलब बिहेवियर भी चेंज करना है, एजुकेशन का मतलब एटीट्यूड भी चेंज करना है। अगर एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ, बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है सर। और ना बिहेवियर चेंज करेगा सोशल मीडिया, ना एटीट्यूड चेंज करता है, इसलिए बच्चे को दूर रखिए। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया, वैसे योगिनी बहन ने मुझे बोला था आपको जितना टाइम लेना है ले लीजिए। मैंने कहा फिर मैं रुकूंगा नहीं। सो एनीवे थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सो मच ब्रदर नरेंद्र कौशिक जी। मैं अभी निवेदन करना चाहूंगी ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि वो सौगात लेके आए। आदरणीय भ्राता निकुंज भाई जी से निवेदन है कि आज के हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी को ईश्वरीय सौगात दे, प्रभु प्रसाद दे, शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी आप सभी का नेक्स्ट सेशन 10 मिनट में ही यहाँ ही शुरू होने वाला है, इसलिए आप 10 मिनट चाहे तो यहाँ पर ही अपने आप को वार्म अप कर सकते हैं, बाहर कोई भी नहीं जाएंगे। भ्राता निकुंज भाई जी, डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे को ईश्वरीय सौगात, प्रभु प्रसाद एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर सोमनाथ भाई डॉक्टर ब्रदर वाई बाप जी को ईश्वरीय सौगात, प्रभु प्रसाद एवं शॉल देकर सम्मानित करेंगे। डॉक्टर पी शिव स्वरूप जी को ईश्वरीय सौगात, आवा शुक्ला जी को ईश्वरीय सौगात, शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे। हम सभी तालियों से उनका अभिवादन करेंगे। मैं फिर से अनाउंस कर रही हूँ 10 मिनट में आपका नेक्स्ट सेशन यही शुरू होने वाला है, इसलिए निवेदन है कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाए। डॉक्टर पी स्वरूप शिव स्वरूप भाई जी को शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे, ईश्वरीय प्रसाद एवं सौगात देंगे। डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे को शॉल उड़ाकर सम्मानित करेंगे, ईश्वरीय सौगात एवं प्रभु प्रसाद देंगे। डॉक्टर कमलेश मीणा जी को भी ईश्वरीय सौगात, शॉल एवं प्रभु प्रसाद देंगे। उसके पश्चात बहन आरती त्रिपाठी जी को भी ईश्वरीय सौगात, शॉल और प्रभु प्रसाद देकर सम्मानित करेंगे। तत्पश्चात भ्राता दिलीप जैन जी को भी ईश्वरीय सौगात देकर, प्रभु प्रसाद देकर सम्मानित करेंगे।